مسلمانوں ملے تو کہنے لگے کہ میں اب مسلمان ہوا, حالانکہ وہ تقریباً 50-55 سال کا آدمی تھا, لیکن کہنے لگا کہ میں اب مسلمان ہوا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہوا. ایسے ان اجتماع میں دو تین دن جب اجتماع کے ماحول میں لوگ رہتے ہیں, ایمان عمل کی باتیں سنتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہمارا پورا کا پورا مجمع جماعتوں میں چلا جائے, تفصیل ہوگا تو چلے جائیں گے, نہیں ہوگا جن کے مقدر میں ہیں وہ ان شاء اللہ ضرور جائیں گے, لیکن اگر وہ یہاں سے چیک کرنے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی بات پیدا ہو گئی, سوچ بدلی, فکر بدلی, جذبات بدلے, کچھ احساس بدل گئے, کیسے جینا ہے اس کی فکر ان کے اندر آ گئی, تو بقول مولانا احمد خون رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات فرماتے تھے, آپ نے ان کے دل میں بیج ڈال دیا, آپ نے ان کے دل میں بیج ڈال دیا, ایمان کا اسلام کا بیج ڈال دیا, وہ ان شاء اللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ضرور اگے گا. تو یہ اجتماع میں شرکت سے بہت بڑا نفع ہوتا ہے. ہمارے بہن صاحب نے بدلا فرمایا, اجتماع کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بارش برس جائے کسی زمین پر, تو کوئی کھیتی نہ بھی اگائے تو بھی کچھ نہ کچھ ہریالی خود بخود نکل آتی ہے, خود بخود ہریالی اور تھوڑی زمینوں سے نکل آتی ہے, سب سے سب زمینوں پر پہاڑ پر بڑا مٹی ہوتی ہے وہاں بھی اگ جاتی ہے گھر. ایسے جب اجتماع ہوتا ہے تو ہر قسم کا طبقہ کسی نہ کسی درجے میں متوجہ ہوتا ہے, سال بھر جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی میدان میں آ جاتا ہے, ایک قسم کی جاگروتی آ جاتی ہے, بیداری آ جاتی ہے. تو مختلف طبقوں پر اس اجتماع کے مختلف اثرات پڑتے ہیں جو ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. بابا یہ زمین ہے, ایمان ہے, وہ میلا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اس کو تازہ کرنا پڑتا ہے. تو جیسے تازہ کرنے کی اور محنتیں ہیں, ایسے تازہ کرنے کی اجتماع بھی ایک محنت ہے, کہ اس کے بہانے سے نوجوان جو کچھ نہیں کرتا تھا وہ بھی کھڈا کھودنے آ جاتا ہے, وہ بھی بلدیاں جھڑنے آ جاتا ہے, اور وہ بھی کچھ نہ کچھ. تو اس کا دین اور ایمان اور اسلام یہ سب تازہ ہو جاتا ہے. ارے بات سمجھ آ رہی ہے, اور ایک اچھے جذبات ایک اچھی فکر لے کر پھر وہ حاصل ہوتے ہیں. تو اسی کے نسبت سے ہمارے لوگوں کی جماعتیں ایسے نبی کو لانے کے لیے پھرتی ہے. ایسے ہی اللہ کے راستے میں پھرنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اللہ کے راستے میں پھرنے کا غرض یہ ہوتی ہے پھرنے کی, کہ اللہ کا کلمہ ایک ایک تک پہنچ جائے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ غرض, یہ ہیتو ہے, یہ بہت بڑا مقصد ہے. ایک کو لے کر دنیا میں نبی آتے ہیں, نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے, اس کی محنت اور فکر کرنا. تو اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اس سے بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بہت بڑا عمل ہے, کیونکہ لوگ اس سے دیندار بنتے ہیں, اس سے لوگ اللہ والے بنتے ہیں. تو ان کا چلنا پھر اللہ کے نظر پر یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اس میں جو جماعتیں پیدل چلے وہ اور زیادہ وزندار ہے, کیونکہ یہ ہماری محنت, یہ نبیوں کی محنت ہے, اور اس میں پیدل چلنا جو ہے وہ نبیوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اکثر نبیوں کو آپ دیکھو گے کہ نبیوں کی محنت پیدل ہوئی ہے, تو پیدل چلے ہیں اکثر نبی. ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے سفر آپ کو پیدل ملیں گے. تو یہ پیدل چلنا یہ نبیوں کی محنت سے زیادہ میل کھانے والا عمل ہے, اس کی برکتیں بھی بہت ہوتی ہے, چلنے والوں کے لیے بھی بڑی برکتیں ہوتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جتنا اس راستے کا مجاہدہ کیا جاتا ہے, اللہ پاک دلوں کے بادل کو کاٹ دیتا ہے, اندر کے اندھیرے کو اللہ کاٹ دیتا ہے, اور پیدل چلنے والوں کے قدموں کے نیچے اللہ فتنوں کو دبا دیتے ہیں, فتنے دبا دیے جاتے ہیں. تو اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں. تو یہ اثرات جو اللہ کے راستے میں ابھی جا کر آئے وہ بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں. ہماری وہ جماعتیں جو سواری پر چلتی ہیں ان سے زیادہ بھاری ہے ان کا اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا. اور تیسرا بڑا کام بھی ہو گیا ان جوانوں کے چلنے سے, وہ یہ ہوا کہ قسم قرص مسلمانوں کی خبر گیری ہو گئی. آپ دیہاتوں کے مسلمانوں کے حالات دیکھو تو بیچارے بہت حالات میں ہوتے ہیں, قسم قرصے میں ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ قسموں بولتے ہیں. ان کے پاس نہ دین ہوتا ہے نہ دنیا ہوتی ہے, دین بھی نہیں ہوتا دنیا بھی نہیں ہوتی, بہت ہی زیادہ قسموں بولتے میں ہوتا ہے. اور دوسرا, دین کی کوئی محنت وہ نہیں ہوتی تو ان کو کوئی متوجہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا, بلکہ غفلت کے اسباب ان کے ہاتھوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھو, ابھی یہاں ہم شہر میں رہتے ہیں, صبح آپ نے سنا ہوگا چاروں طرف سے ہمارے کان پر اذان کی آواز آ رہی تھی. ارے بولا, آپ نے سنا نہیں سنا؟ ابھی ایمان والا کچھ بھی نہ کرے تو بھی اس کے کان پر اذان کی آواز آ رہی ہے, تو اس سے اس کے دین میں تازگی آتی ہے, اس کی اسلام میں تازگی آتی ہے. اس اذان سے بول اثر کرتا ہے, پیار میں کسی کو زور سے بولے تو اثر کرتا ہے, پھر کسی کو پیار سے بولے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے کلمے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوا وہ کچھ نہیں سمجھتا, اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کے کام میں اذان ہو, کیا مطلب کہ اذان اس کے سینے پر اثر کرے گی. اگر وہ اثر انداز نہ ہوتی تو اذان کا حکم بھی ملتا. تو ہمارے شہر کے علاقوں والوں کو وہ چاہے نہ چاہے جب کان پر اذان کی آواز پڑتی ہے تو یہ ان کے دین کو ایمان کو ٹھہرا کر دیتی ہے. ہمارے دیہاتوں والے جہاں یہ عمل نہیں ہے, مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے, مدرسہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوتی, تو ان کے کانوں پر یہ آواز نہیں پڑتی. یہ آواز پڑتی نہیں, دوسری آواز روز پڑتی رہتی ہے, تو ان کے دل اس سے تاثر لیتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. اور اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو غیر محسوس طریقے پر پھر وہ دوسرے چکر کے ہو جاتے ہیں. ہم ابھی اجتماع کی محنت اجتماع سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمیں دو کاروباریاں ملی, ایک کاروباری ان بستیوں کی ملی کہ جن بستیوں میں کچھ نہیں ہے لیکن ہماری جماعتوں کا آنا جانا شروع ہو گیا, تو ان کا دین پر جمنا استقامت اسلام اور دین پر جمنے کی کاروباری ملی. ایک ان بستیوں کی کاروباری بھی ہمارے سامنے آئی کہ جہاں کچھ نہیں ہے اور وہاں جماعتوں کا جانا بھی نہیں ہے, تو ان سے دین کی بیزاری والی باتیں بھی سامنے آئی. کے بعد بستی والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بتاؤ, ہم ایسا ویسا ایسا بھی کہا کہ ان دیہاتوں میں آنا جانا نہیں ہوا. اور وہ کمزوری بھی آئی کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن جماعتوں کا آنا جانا ہو گیا ان کے پاس, تو ان کا اپنے دین پر جمنا. ایک بستی والوں کو سے میری ملاقات ہوئی, ہمارے وقت سرپنچ بھی ہوئی, ان کے پاس کچھ نہیں, تو ان کے پاس اور لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ تو اثر ہمارے میں سے تھے اور ایسے تھے ایسے تھے, وہ کچھ بھی نہیں جانتے اور کچھ کرتے بھی نہیں تھے. دونوں نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ وہاں دونوں کی جمع سرگر جاتی ہے, وہ آتے ہیں لوگ اور وہ بستی والے ان کی خبر کے لیے سال بھر پوچھتے ہیں, انہیں آتا کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو, ہمیں کچھ آتا نہیں ہے اور ہم کوئی عمل اسلام کا نہیں کرتے, ایک بھی کام ہم نہیں کرتے اور آتا بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں, انہوں نے کہا. اور پھر آگے کہا کہ آئندہ کبھی ہمارے پاس ہوتا نا, ہم تو اسلام پر مرنا چاہتے ہیں. وہ بستی والوں نے یہ سنایا. یہ کون سی بستیاں کہ جن کے پاس کسی نہ کسی درجے میں آنا جانا ہوا, اور وہ حضرات کی بھی کمزوری آئی کہ جن کے پاس آنا جانا نہیں ہوا. تو وہ ایمان والوں نے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے پاس بتاؤ, بلکہ بعضوں نے اپنے نام بھی بدل دیے. تو یہ جو ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, یہ سب جگہ وائرنگ ہو جاتا ہے, اور ایمان والے کا کسی نہ کسی درجے پر دین پر جمنے میں اور ان کے جماؤں میں یہ معاون بن جاتا ہے. تو یہ جماعتیں جو جاتی ہیں نا, تیسرا بڑا کام یہ ہو جاتا ہے, بہت بڑا کام, کیسے قسموں کو سے لوگوں کی خبر گیری ہو جاتی ہے. ہم ڈاکٹر انچارج چھپے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس دین ہوتا ہے نہ ان کے پاس دنیا ہوتی ہے, اور شیطان بھی ان پر بہت محنت کرتا ہے. نفس ایمان والا ہونا یہ آخرت کے حساب سے مالداری کی چیز ہے. ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کا کام ہو گیا. اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی اس کا کلمہ اس کو جنت میں ضرور لے جائے گا. تو جب آدمی ایمان کے علاوہ کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کو اتنی محنت نہیں کرتا, لیکن جب ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کی محنت اس پر اخری سخت, وہ تو موت تک محنت کرتا ہے, گناہ بھی کرواتا ہے اور بھی چیزیں. ہمارے پڑوس کے ملک کا ایک کھیلنے والا, وہ پہلے اسلام میں نہیں تھا, بعد میں لگا کہ اسلام کی واپس لی, وہ ایسا کہہ رہا تھا کہ میں جب اسلام میں نہیں تھا تو مجھے کبھی لڑکیوں کے وسوں سے آتے ہی نہیں تھے. وہ ایسا کہہ رہا تھا, ہوتے ہیں جوان آدمی لڑکیوں کے وسوں سے آتے ہیں, تو مجھے آتے ہی نہیں تھے, اور جب سے ایمان میں داخل ہوا تو وسوں سے آ رہے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھ تھے, وہ کہنے لگے بھائی جب آدمی ایمان میں نہیں ہوتا تو شیطان کو اس کو گناہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا کفر ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس کا کفر ہی جہنم میں لے جانے کے لیے. لیکن اگر وہ ایمان میں آ رہے اب اس کو بڑھائے گا تو جب اس کو جہنم سے بچانے والی چیز کے بیچ پڑ گئے وہ ایمان, اب اس کے ایسے گناہ کرو کہ وہ کسی نہ کسی درجے پر اس طرف چلا جائے. تو یہ دیہات میں کسی نہ کسی درجے میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو شیطان تو اس پر محنت کرے گا, محنت کرتا ہے. اس لیے آپ اس کو دیکھو کہ اکثر دیہات والے دین کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں, اور شیطان ایک کام یہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے دیہات والوں میں آپس میں دل پھاڑ دیتا ہے. آپ دیکھنا پانچ گھروں میں تو ایک دوسرے کو بنتی نہیں ہوتی. آپ نے اس کا تجربہ کیا کہ جہاں دین کی کوئی محنت نہیں ہوتی وہ تو دین ایک ایسا ہے کہ آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے, چھوٹے بڑوں کا احترام پیدا کر دیتا ہے, بھائی چارہ پیدا کر دیتا ہے, ایک دوسرے ایمان والے کو ایمان والے کا بھائی سمجھاتا ہے. جب محنت ہی نہیں ہوئی وہاں یہ سب باتیں کون سمجھائے گا؟ تو اکثر ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو جمع بھی نہیں ہو پاتے. اور اس کے علاوہ ان کے اندر جہالت ہوتی ہے, جہالت. ہم تو مسجدوں میں بھی کوئی بات سنتے ہیں, گشتوں میں سنتے ہیں, اختر اجتماع میں سنتے ہیں, ملاقاتوں کی جماعت آتے ہیں ان سے سنتے ہیں. ان کے پاس تو 100% جہالت ہوتی ہے. اور بکل بنانے یا ان سب ہوا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جہالت جو ہے نا وہ کفر کی صفت ہے. آدمی جاہل ہے, کافر اللہ سے جاہل ہے. اور دوسرا ان کے پاس غریبی ہوتی ہے, فقر و فاقہ. اور فقر و فاقہ بھی جو ہے نا آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. یہ سارے اسباب دین کے چھوٹنے کے ان کے پاس موجود ہے. ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ بہت بڑی بات ہے, جن کا اجر زیادہ ہے. بھائی ایک پیٹ بھرے کو کھلانا اور ایک بھوکے کو کھلانا, تو جتنی زیادہ ضرورت میں معلوم بنے تو اس کا اتنا اجر زیادہ ہوگا. تبوک میں جو گئے وہ کسوا پورس کی حالت میں گئے, تبوک والوں کا اجر الگ. ایسے ان کسوا پورس لوگوں کے پاس جانا, مان لیا سب یہ فرماتے تھے کہ کسوا پورس لوگوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ تمہیں اللہ ملے گا. کون ملے گا بولو؟ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, لیکن ان کے اور محنت کر رہے تھے اللہ ملا. تو یہ جماعتیں بہت ہی قابل مبارک بعض جماعتیں ہیں جو ان لوگوں نے بہتر آئی ہے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ان سے کچھ بھی نہ ہوا ہو تو خالی ان کا چلنا بھی خیر سے خالی نہیں, خالی سوتے سوتے آ گئی ہو تو بھی, ارے بولو, ان کا چلنا خیر سے خالی نہیں. ماشاء اللہ یہ جماعتیں تو پھر کام بھی چلتے آتی ہے, اور کام میں 19 تو ہوتا ہے, آگے پیچھے تو سبھی کیسے ہوتا ہے. تو ہم اس کے حقدار نہیں ہیں کہ لوگوں کی ہم کمزوری پوچھیں. یہ تو ہم لوگوں سے افضل لوگ ہیں, بہتر لوگ ہیں. وہ کام کر کے آئے ہیں, ہم تو گھروں سے آئے ہیں. تو کیا بھلا گھر میں بیٹھا ہوا اور اللہ کے راستے میں چلنے والے تو برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتے. تو پھر کمزوری کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کمزوری ان کا جائزہ لینے کے لیے نہیں پوچھ رہے, بلکہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کاروباری جو ہے وہ ہمارے کام کا ایک بڑا حصہ ہے. چلنے کے نبی علیہ السلام جب جماعت کو روانہ کرتے تھے تو روانہ کے بعد سمجھا کر بھیجتے تھے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور واپس آتے تھے تو اس سے حالات پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا. تو راستے میں جاتے ہیں تو کبھی موقع پر موقع کوئی چیزیں پیش آ جاتی ہے. بعض چیزیں ہوتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے, بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی تھی. تو ان چیزوں کی رہبری فرماتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا, جب رہبری ہو جاتے تھے تو دوبارہ جاتے ہوئے آدمی اس معاملے کو اس بات میں چوکھٹ نہ ہو جاتا تھا کہ دیکھو گزشتہ یہ ہوا تھا, آئندہ یہ چیز نہیں کرنی. اس سے کام بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. کام کرنے والے بھی اگر جس کے رہبری وقت وقت پر نہ ہو تو آدمی ہے اپنے سمجھ کر کچھ چیزیں اس نے کی ہو تو وہ صحیح سمجھ کر کرتا ہے. کیا سمجھ کر کرتا ہے؟ حالانکہ وہ نہیں کر رہا تھا, اب وہ صحیح سمجھ کر کیا. اب اگر اس کی بار وقت رہبری نہیں ہوئی اور پھر وہ اس کو ہمیشہ کرتا رہتا ہے, ہمیشہ کرتا رہے گا. اور بار وقت کاروباری ہو گئی, رہبری ہو گئی, تو آئندہ وہ بھی محفوظ اور جس کام میں ہم گئے ہیں وہ کام بھی محفوظ. اس لیے دیکھو تبلیغ کو 100 سال ہو گئے, کتنے سال ہوئے الا بولو تو صحیح, 100 سال. لیکن اس کی کوئی چیز بدلی نہیں, نہ آدھا ریش بدلے, نہ روانگی کی بات بدلی, کوئی چیز نہیں بدلی. کیوں؟ اس میں دو چیزیں بڑی ہے, ایک روانگی کی بات کچھ نہیں کر دیکھو ایسے کرنا ایسے کرنا, اور ایک کارداری. تو کارداری روانگی سے سمجھا دیا, کارداری سے ریبری ہو گئی. تو یہ 100 سال ہو گئے لیکن تبدیلی نہیں ہوئی. ورنہ تو کہوت ہے کہ کتنے میل پر بولی بدل جاتی ہے, بال گاؤں میں بولی بدل جاتی ہے, اور اس کو 100 سال ہو گئے نہیں بدلی. کہ اس کے اثرات یا اس کی برکتیں ہیں. اس لیے ان عملوں کو ہم ہلکا نہ سمجھے. اور یہ حضور کے مسجد کے اعمال میں شامل ہے. آپ کو حضور علیہ السلام کے زمانے کی کاروائیاں ملے گی کہ جماعت آئی اور حضور نے پوچھا کیسا رہا, تو انہوں نے سنا ایسا ہوا ایسا ہوا, پھر حضور نے فرمایا ایسا نہیں کر رہا تھا, آپ ایسا کر لیتے. ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے امیر نے کہا ایک بات پیش آئی آگ میں جو لے جاؤ, تو ہم نے سب سے کہا صاحب ہم آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے تھے اور آپ آگ میں کہاں بھیج رہے ہو. تو فرمایا کہ وہ ساتھی کہنے لگے ہم نے تو اس موقع پر امیر کی بات نہیں مانی. تو انہوں نے فرمایا اچھا کیا نہیں مانی, اگر ان کی بات مان لیتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. اب یہ رہی فرمائی, اب سب کو پتا چل گیا کہ کرنے کی چیز نہیں تھی. کیسے ہوتا ہے, ایک جماعت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسا رہا, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ہوا یہ ہوا اور ہمارے فلاں ساتھی نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس میں کلمہ پڑا, پھر اس نے اس کو مار دیا. ویسا کیوں کیا تم نے, تو وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑا تھا. تو انہوں نے فرمایا اچھا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا. پھر اللہ سے مراد ہے کہ کہہ اللہ میں اس کی موت سے میں بری ہوں کہ میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے. یہ بتایا کہ گویا یہ تم نے غلط کیا, ایسا نہیں کرنا تھا, تو یہ رہبری ہو گئی. ایسے کئی جماعتوں کو آپ کو ملے گا کہ حضور کے پاس آئے اور یہ رہبری ہو گئی. تو ہم اسی نیت سے سرگرمی سنائیں گے بھی اور سننے والے بھی اسی نیت سے کہ ہماری نبی کے مسجد کا عمل ہے اور اس میں ہماری حفاظت بھی ہے, اور یہ حضرات جو سنائیں گے وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے. میں نے کہا ہم اخلاق نہیں ہے کہ آپ کی کارگاری سنیں, لیکن چونکہ ہمارے کام کا بھی ایک حصہ ہے, حضور کی مسجد کا ایک عمل ہے, اس لیے ہم کو اس کو کر رہے ہیں. اب رہی بات کیا سنانا, ایک موٹی موٹی کچھ بات ہے, اس پہ ان شاء اللہ جو آپ کی زبان میں کام کیا وہ سامنے آ جائے گا اور ضلع کے حالات سب کے سامنے آ جائیں گے. ضلع کے حالات اس کے ذریعے سے آگے کیا کیا کرنا اس کی رہبری ہو جاتی ہے, کارگاری کے ذریعے سے صرف کیا آگے کی تفصیل بن جائے گی. یہ ہوتا تھا حضور کے زمانے میں ایک جماعت آئی, انہوں نے کارگاری سنائی, اس کے ذمہ دار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سنایا. حضور نے سننے کے بعد اچھا آپ آگے کیا کرنا, تو پھر اسی رخ پر حضرت علی کو بھیجا, تو جو کام کرنے کے لیے گئے تھے وہ کام حضرت علی نے پورا کر دیا رضی اللہ عنہ. تو ایسا ہوتا ہے, ایک کام سنا پھر آگے اس کے لیے کیا کرنا اس کی تدبیر سوچی جاتی ہے. تو آپ حضرات ان شاء اللہ جو کاروباری سنا ہوگی اس سے آگے کی جو بھی شکلیں بنے گی اور جو خیر وجود میں آئے گی وہ آپ کے نام یا نام میں ہوگی, تو یہ ذہن کے ساتھ ٹھیک ہے ان شاء اللہ. سنانے میں کیا سنا ہوگا بھائی, آپ کون سے زون کی جماعت تھی, آپ کی جماعت کون سے زون کی تھی, کون سے ہلکے کے تھی یا کون سی مسجد کی تھی, ایک کتنے ساتھی تھے, اس میں کیا رہنے والے ساتھی کتنے تھے, اور آپ کو محنت کے لیے کون سا علاقہ دیا گیا, اس میں کتنے مقامات آپ کو دیے گئے تھے, وہ مقامات مسجد مدرسے والے تھے یا بغیر مسجد مدرسے کے تھے, اور اس میں مانوس کتنے تھے غیر مانوس کتنے تھے, آپ کہاں ٹھہرے اور جن بچوں میں آپ ٹھہرے وہاں کیا کام ہوا, وہاں کے مقامی جہاں اذان نماز نہیں تھی کیا کہیں اذان نماز شروع ہوئی, مقامی حضرات آپ کے ساتھ چلے یا مقامی حضرات آپ کے ساتھ شریک ہوئے, اور آپ کتنا پہلے چلے ساتھی کیسے رہے, یہ موٹی موٹی چند باتیں سنا لیں بات کا سب ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اچھا پہلی جماعت آ جائے آپ کی جماعت میں سے کسی کو بھیجو, اچھا چلو آپ آ جاؤ, آپ جہاں کھڑے ہو گئے ان کو کچھ دیر تو تھوڑی دیر ہو جائے تو کھڑے رہ سکو گے, آ جاؤ چلو جوان آدمی ہے, کیسے جوان آدمی ہے جوان, آپ کی جماعت کون سے زون کی تھی, ہلکے کی
مخلوط جماعت
کے قریب ہے,
مخلوط جماعت کی آٹھ ساتھی تھے, چار مہینے لگائے ہوئے چار ساتھی تھے, چلا لگائے ہوئے چار ساتھی, اور ہم کو کرجن علاقے کے اندر روٹ دیا گیا. سب سے پہلے ہمارے
کتنے جہاد دیے تھے, کتنے جہاد دیے تھے, کرجن
دیہات یعنی قیام والے دیے تھے, 15 دیہات جو ایسے تھے کہ جن میں پانچ یا اس سے کم, یعنی پانچ سے
کم والے, یہ جو 20 جہاد دیے تھے وہ مسجد مدرسے والے تھے یا اس طرح سے کتنا مسجد مدرسہ تھا,
مسجد والے 10 دیہات تھے.
اچھا 10 دیہات, یہ 10 دیہات میں سال بھر جماعت آتی جاتی ہے,
جماعت سے تو نہیں جا سکتی وہاں پر,
مطلب غیر مانو تھے,
غیر مانو دستیا.
اچھا
ایک چھوٹا دیہات تھا جہاں مالپور وہاں مسجد ہے, وہاں سے جاتی ہے
ایک دیہات میں, باقی 9 دیہات میں سال بھر جماعت کا آنا جانا نہیں ہے.
اچھا یہ دونوں کی جماعت سے ماشاء اللہ 10 سال سے
جاتی, وہ وہاں کہاں جاتی ہے, وہاں مسجد میں تو جانا نہیں ہے, تو وہاں جماعت جاتی ہے تو وہ کہاں ٹھہری جماعت ہے ان 10 دیہاتوں میں,
جماعت ہماری ٹینٹ میں تھے
یہ 10 کے 10 دیہاتوں میں. اچھی بات, और दूसरे जो 10 देहात आपने कवर किए, इन 20 में से आपने कितने कवर किए?
जो छोटे
देहात थे, यानी
वो 20 के अंदर
नहीं, क्या मालूम है
उसके अंदर भी सारे देहात थे 20 के भी देहात थे। एक में ऐसा हुआ था कि वो बारिश की वजह से टेंट और ये सब तो वो बाजू के देहात में गए थे, बाजू के देहात में गए थे, वहाँ से उसके वहाँ
माशाल्लाह। तो भैया 19,000 देहातों में आप हजार में टेंट डाला और तैयार किया है। अच्छा, ये जो 10 मस्जिदें थी, उन मस्जिदों में आपने कहीं जाने की कोशिश की थी? ये दो जो 10 मस्जिदों में 10 देहातों में मस्जिद थी, तो वहाँ टेंट डालने के बजाय आप किसी मस्जिद में आपने जाने की कोशिश की थी?
मस्जिद में जाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन ऐसा किया कि भाई करीब में करीब जाकर हम लोग थे।
बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, अल्लाह आपको जो है खबर बहुत अच्छा किया। लेकिन आपको वो बस्तियों वाले कैसे पेश आए, आपको 10 बस्तियों वाले जहाँ मस्जिद थी कैसे पेश आए, आपकी बात सुनी उन्होंने, मुलाकातें हुई?
यानी हम लोग पहले जो निकले थे साथियों को पहले रवानगी की बात भी की थी और हमने उनको फिक्र हमारे साथियों ने दिलाई थी कि भाई जिस बस्तियों में हम जा रहे हैं दिलो दिमाग में से गैर मानुष का लफ्ज निकाल।
बहुत अच्छा।
और यूं तो समझो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत और इनकी ज्यारत के लिए, इनकी मुलाकातों के लिए हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है और हम इतनी मेहनत करें कि वो लोग भी यानी कि इस मेहनत को समझकर अपने मकसद के मातहत जिंदगी गुजारने वाले।
बहुत अच्छा।
इतनी ये साथियों को करा के फिर बस्ती में जाते,
बहुत बढ़िया।
और पैदल चलने के यानी वहाँ पहुँचते थे तो पहले तो टेंट नहीं लगाते थे, प्लास्टिक बिछा कर मशविरा करके मुलाकातों का नजम बनाते। हमने वहाँ पर अक्सर जो देखा थे तो हरेक इमाम को तकरीबन यानी हदिया पहले दे देते, तस्बीह है, मिसवाक है, तो वो देते थे। और बाद देहात के अंदर तो मैंने कहा कि भाई इमाम साहब से मिलके जोहर की नमाज जैसे पढ़े, साथ ही अक्सर वहाँ पर नमाज मस्जिदों में पढ़ते। और इमाम साहब से मैंने कहा पहले एक गाँव था तो कि भाई मेरी 68 साल की उम्र हो गई, माशाल्लाह आपकी मस्जिद में मैंने पहली मरतबा नमाज पढ़ी, दिल को बड़ा सुकून हुआ और आप बड़ी इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। मुझे कहा कि भाई आप क्यों आए हैं? मैंने कहा कि टंकारिया में बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है, इनकी दुआ की दरख्वास्त आपसे करने हम लोग आए हैं, आप दुआ भी फरमा गए और आपके माहौल नरियाने के बस्ती के अंदर मस्जिद के अंदर अल्लाह पाक ने आपको इमाम बनाया है, तो आप भी इनको दावत देकर वहाँ पर दीन की, अल्लाह की, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात होगी तो वहाँ पर आप भी इमाम है, उसकी दावत चला। और जितने देहात ये थे तो उस देहातों के अंदर जो इनके यानी बाकी लोग कहते हैं जिनका ये होता है, तो साथी अक्सर वहाँ पर जाकर इनको भी हदिया देते थे और इनको भी यही दुआ की दरखास्त हम लोग करते, जैसे हमारा चुरंदा है।
क्या रहा जब आप दुआ की दरखास्त करते थे फिर हजरत की तरफ से क्या रहता था?
वो हजरत माशाल्लाह कहते थे कि इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और आप लोग भी हमारे लिए दुआ
करेंगे। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ना कि भैया आप उनके दिल में आपकी जगह हो गई और आपको उन्होंने इस्तकबाल किया, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए।
अभी कल एक गाँव के अंदर फोन किया था, वो बड़े आदमी है वो गाँव के, उसने कहा कि इंशाल्लाह मैं तो आ नहीं सकता हूँ लेकिन मेरे घर मोहल्ले के साथियों को मैं तरकीब
देगा। नहीं तो मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह इन सारे देहात वालों ने जब आपका इतना अच्छा इस्तकबाल किया तो आप हजरात ने उनकी वहाँ तैयार करने की कोई शक्ल नहीं बनाई थी कि आपकी जमात उनके देहात में जाए या उनके मस्जिद में ठहरे, आपने ऐसी कोई?
मेरा पर्सनली राय ऐसी है कि वो जमातों में मैं गुजिश्ता दोनों में चला था, तो उसमें जो मस्जिद में जाने की हम लोग कोशिश करते हैं तो उससे वो लोग ज्यादा भड़क कर हमारे पास आते
हैं। अच्छा अच्छा।
तो उस पॉइंट को हमने रखकर देहातों के करीब करीब रहकर काम किया तो उससे बड़ा नफा हो गया।
अच्छी बात है।
जैसे ये हमारा एक सोखड़ा गाँव है तो बहुत दूर जमाते थे, तो एक साथी मानुस था वो लेने भी बेचारा मुझे कहा कि यहाँ कुआ है बहुत डेढ़ एक किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि देखो भाई आपसे जितनी मदद हो सके करीब हम लोग ठहरे, बिल्कुल मस्जिद के गांव के करीब ठहरे दाशाला भूमि और वहाँ पर मुलाकातों का पूरा नजम बनाया।
बहुत अच्छा माशाल्लाह।
14 ऐसी जगहें थी कि जो गैर मयाने के दूसरे, लेकिन सारे जगह पर मस्तूरात का जोर करके उनके मैं बात
करूँ।
वो ऐसा नहीं बल्कि वो लोग दावत भी देते थे मस्तूरात के अतिबाद। एक देहात में हम लोग मस्तूरात का प्रोग्राम उनको समझ में नहीं आता था, थोड़ी तरकीब दी के देखो भाई आप लोग तो जियारत में जुमा में सुनते रहते हैं मस्जिदों में इमाम के जरिए से भी, लेकिन आपकी ओर से कलमा अल्लाह नबी क्या सुनेंगे और भी अल्लाह की बातें। तो उसको थोड़ी समझ में आई थी कि अच्छा चलो हम प्रोग्राम रखते हैं, तो उसके मोहल्ले के एतबार से उन्होंने प्रोग्राम रखा। जब मुझे बुलाने आए थे हमारे कैंप के करीब तो हम लोग पहुंचे दो साथी, तो कहा कि हमारी अम्मा नहीं है अभी इस मौलाना, एक काम करो आप थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अम्मा मेरी खेत में गई है तो मैं बाइक लेकर इनको लाता हूँ और फिर इनको भी सुनाना है। तो हम लोग 10 मिनट ठहर गए तो फिर वो लेकर आए। यानी 14 जगह ऐसी थी कि जहाँ पर यानी कि मस्तूरात के अतिबार से प्रोग्राम बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह ताला ने आसान
किया। अरे बताएं कि आपने जो मस्तूरात में प्रोग्राम की और वहाँ अपने मर्दों से भी इतना प्यार मोहब्बत से फिजा बनाई, उन बस्ती वालों के क्या तासरात रहे? मसूरात में आपने बात की होगी तो मसूरात में पहली बार बात बहुत सारे देहातों में सुनी होगी, ऐसे कितने देहात है जहाँ मसूरात में पहली मरतबा बात सुनी?
तकरीबन 14 में से 10 या 11 होंगे
पहली बार उन्होंने लड़की। वाह 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 वाह।
बात चलती थी
तो ये बताओ
एक गांव में चलती थी बात, तो अंदर से चार औरतों ने मैंने फजाइल अमल की किताब के सिलसिले में थोड़ी तरकीबी बात और फजाइल बताए, तो चार औरतों ने कहा कि मौलाना मेरे घर में अभी जभी किताब ला दो। तो माशाल्लाह वहाँ के एक साथी मानूस थे, इनको हमने फिक्रमंद मिला है, दो दिन से पहले हमें पहुँचा था, वो दो घरों में किताब आ गई है और वो रोजाना पढ़ते हैं और दो मकान के अंदर वो लोग आज ला गए
माशाल्लाह। तो इनकी औरतों ने क्या तासुर का अपने मर्दों के जरिए से कहलवाया हो या उनका कोई पर्चा वर्चा आपके पास तासुर का आया हो, पता है ना उन्होंने बात सुनी उनके, उन्होंने क्या तासुर बताया आपको? आपने 14 जगह पर मसूरत में बात की तो क्या
गाँव के अंदर औरतों ने अंदर से जैसे बात खत्म होने के बाद दुआ कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने बताया कि जिंदगी में पहली मरतबा हमने ये सारी बातें सुनी और आप लोग माशाल्लाह कितनी नरम अंदाज में और आमाल के साथ सारी बातचीत फरमाई, तो आप हमें और भी हमारे मर्दों को भी सुनाना इस तरह।
अच्छा।
एक जगह पर बांधे
बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह।
हम तो एक से 16 किलोमीटर
नहीं अभी 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 बाकी है वो तो खेल रहा समझ आपका, ये मर्दों में प्रोफेशन लगा था जिन बच्चों में आप जाते थे जिस तरह आपने मुस्कुरात में फिक्र की, ऐसे उनके मर्दों की मुलाकात 100% होती है?
मर्दों की माशाल्लाह फीचर तो 100% करते हैं, यानी मुलाकातों की नजर
कितने देहात के जिस देहातों में से माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, इसलिए होना भी एक अच्छी बात है कि बीच बीच से सब क्यों रह जाते थे
वो कोई आज वहाँ पर अक्सर ये होता था कि छोटे देहातों के अंदर वो फैक्ट्रियों में या तो फिर कुछ जगह पर मशगूली, और एक तो दो तीन बातें थी इसमें मौलाना, एक तो दिवाली का वैकेशन था और दूसरी बात ये थी कि मैरिज की मौसम बहुत ज्यादा थी और तीसरी बात तो मुझे यहाँ ना कहना ग्यारह
तो मत गाओ फिर
छोटा था ग्यारह का, तो वो लोग वहाँ चले जाते थे और अक्सर देहातों में वहाँ पर गए तो वहाँ उसी प्रोग्राम भी था। एक जगह पर तो 11वीं की दावत के लिए मैंने कहा कि माफ करना आया आप लोग बाद में आए, मैंने एक साथी की दावत कबूल कर दी है, इस तरीके से नरमी से मोहब्बत से इनको समझा के बड़ा मानुष किया, लेकिन वो लोग ने भी कहा कि हमारे यहाँ खाने की दावत, मैंने कहा पहले कहा होता तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच जाते आपकी ग्राम
सर, हिस्मत से काम कर दिया है अबूजर, उसमें तबियत से ज्यादा कोई असल मन दी गई अलग अलग कर रहे। अच्छा इन मर्दों से आप मिले तो इनमें क्या तस्वरत रही आप जरा जो उनसे मुलाकात की वो खुश हुए आपकी बात सुनी तो क्या कहा उन्होंने? जैसे औरतों ने कहा कि आप आते रहो हमें बात सुनाओ और हमने पहली बात सुनी हमें किताबें ला कर दो, ऐसे इनके मर्दों ने भी तो कुछ कहा होगा इस तरफ से, उन मर्दों ने क्या कहा?
मर्दों ने यू अक्सर देहातों में कहा कि साल भर में आप एक ही मर्तबा आते हैं,
तो हमारी शिकायत की है
आप तो एक साल में ये आए हैं, तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे आप लोग माशाल्लाह तरकीब तो देंगे हर महीने या तो 15 दिन के अंदर चाहे टेंट न लगावे, साथ ही अगर कोई दिक्कत कर ले तो आएंगे सालों के अंदर ये सारे रुकावटें खत्म हो जाए।
तो भैया उन्होंने हम लोगों की शिकायत की क्या हमारे साल भर खैरियत नहीं पूछते हैं,
सही हो की तो शिकायत नहीं है हमारी, मेरी खुशी है कि हम
भाई हम सब आपके साथ चलेंगे, हम सब एक ही कश्ती के सवार है ना। अल्लाह ने माफ कर दिया।
एक गाँव ऐसा मिला के 8 से 10 मकान मुसलमान के थे, 6 साल से मस्जिद
बंद है,
बंद यानी मस्जिद तो दरवाजा तो खुला है लेकिन उसमें नमाज भी नहीं होती, इमाम भी नहीं है। उनके मदारिस के सिलसिले में बताया कि एक रिक्शा होती है वो करजन के अंदर वो सुबह ले जाती है, बच्चे तो मदरसे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा गांव के अंदर अजान भी नहीं होती, नमाज भी नहीं होती। हमने इनको बहुत समझाया कि कम से कम भाई चलो तुम दूसरी बात नहीं लेकिन अल्लाह के घर को आबाद करने के सिलसिले में, तो वो थोड़ा नेगेटिव अप्रोच की ऐसे बात से थोड़े गुस्से भी हो गए, तो फिर हमने मौका तनाती थोड़ी नरमी से बातचीत करके वो गांव को
पूछो। अच्छा ये जो 10 देहात जहाँ मस्जिद थी उसके अलावा जो 10 देहात वो बगैर मस्जिद के थे ना, वहाँ क्या है नमाज होगा?
वहाँ के जो मुसलमान है अक्सर यानी दरगाह के एतबार से वहाँ ठहरना भी होता था, और उनका समझो कि मस्जिद या इबादत खाना तो नहीं होते थे, दरगाहों के ऊपर वो लोग फजर के अंदर फूल और अगरबत्ती वो नमाज के एतबार से हम उनको समझाते भी थे और बहुत सारी कोशिश भी की हमने।
तो गोया इन 10 देहातों में कहीं नमाज नहीं होती इसके में, यही हुआ ना? एक भी देहात में
इंफिरादी तौर पर वो पढ़ लेते यानी सारे साथी में।
अच्छा आपने कोशिश की कि वहाँ पे इज्तिमाई नमाज शुरू हो?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे देहातों के अंदर 100% कोशिश की
शुरू हो गए।
गुजिश्ता यानी कि मैंने जो कारगुजारी यानी सबसे देहातों के एतबार से फोन किया तो समझो कि एक विजय करके गांव है वहाँ पर 2 मुसलमान के मकान है, इनमें एक सलीम भाई करके इनका चिल्ला लगा है, उनको थोड़ी फिक्र भी लाई तो उनके गांव के एतबार से तो ये जो घर वाले माशाल्लाह जमा होके उसके बाजू में एक हांडोदर के गांव है वहाँ पर मुसलमानों के 10-11 मकान है, वहाँ पर भी मस्जिद नहीं है, मदरसा तो कड़बा से पढ़ाने मौलाना आ जाते हैं चले जाते हैं लेकिन नमाज का निजाम नहीं। ये सलीम भाई का जो चिल्ला लगा है इनको इतना तरकीब दी, इतना भरा कि हमारे चिल्ले के बाद तकरीबन एक चिल्ला हुआ वो 4 मरतबा वो हाडोज में गए और इन्होंने अजान नमाज की कोशिश की। गुजिश्ता बताया था कि भाई 2 साथी हम लोग जुड़े अजान भी दी और नमाज भी पढ़ी, इस तरीके से अब आइंदा इनको तरगीब दे रहे हैं।
वो ये देहात वाले आपके रास्ते में है?
रास्ते में।
अच्छा इन देहात के मुसलमानों के क्या हालात थे जो जिन देहातों में आ गए वहाँ के, और जो इक्का दुक्का जो आप 1 मकान 2 मकान 3 मकान मुसलमानों के दीनी हालात कहते हैं?
जो मकान यानी कि मस्जिदों के एतबार से जितने देहात हैं इनमें तो माशाल्लाह वो लोग नमाज के एतबार से अजान के एतबार।
नहीं उन देहातों का मैं पूछ रहा हूँ जिन देहातों में मस्जिदें नहीं है वो, और जो वहाँ से जिनको आप मिलने गए ना 1-2 क्योंकि ये देहात तो वो 5 से कम वाले उनके हालात क्या है मुसलमानों के?
हालात के एतबार से मैंने ये यानी कि मेरे दिमाग के एतबार से सोचा कि वो दरगाह के एतबार से मुसलमान अपने आप को
मतलब उसकी बुनियाद पर वो टिके हुए हैं, यही हुआ और दरगाह की बरकत से वो इस्लाम पर टिके हुए हैं, मतलब इनकी दीनी हालत बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है।
और उसके अलावा 12 गाँव करके इलाका वो वहाँ पर सर्जन के साथी भी माशाल्लाह खूब मेहनत करते हैं, उन लोगों ने बताया कि हमारे 12 गांव मुंबई शहर के और सारे कन्वर्ट हो गए हैं।
तो
वो 12 गांव के अंदर से कुछ अभी भी हम लोग जो मुलाकातों में पहुंचे तो एक देवजी भाई पटेल करके नाम थे, इनके घर में मैंने देखा कि 4 बापू लोग के और 2 दरगाह के फोटो थे और उसके अलावा कोई मजहब के फोटो नहीं। उन्होंने कहा मैं रोजाना रात को कलमा भी पढ़ता हूँ और दुरुस्त शरीफ पढ़ता हूँ, सुबह में मैं इस तरीके से उठकर कलमा पढ़ता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि ये मजादर गांव है हाईवे के ऊपर जो अपना इस्तीमा, उनके सामने जो चांगा के चंगा कुछ ऐसा बोले कि हमारी स्टोरी ये है कि हमारे बाप दादा पूर्वज वहाँ से आए और ये 12 गांव है तो सारे कन्वर्ट हो चुके। कहा कोरोना से पहले वो लोग दफन करते, कोरोना के बाद वो लोग अभी जला देते हैं भैया इस तरीके से। और उसके अलावा भी और भी 4-5 मकान करीब करीब में थे, बाद में पहले तो नहीं मिले थे, बाद में मैं गया यानी अपने सफर के बाद तो वो लोगों ने भी बताया। और ये दिलजी भाई पटेल का एक लड़का था जो एक्सीडेंट में इंतकाम फरमाया गया, इनके अब्बा ने मुझे बताया रोजाना कुराने पाक और 5 टाइम की नमाज वो घर घर पढ़ता है, वो तो ऐसा था इंतकाल हो गया। बारह गाँव के अंदर एक बीमार गांव है जहाँ गाजीपति है वहाँ के, वहाँ हमारे साथी गए थे, वहाँ 25 मकान है लेकिन वहाँ मस्जिद भी नहीं है और नमाज भी नहीं है, अजान भी नहीं है। वहाँ पर इन लोगों ने फिकर की तो माता ने एक सलीम भाई के मकान के अंदर अजान नमाज के एतबार से वो खुद पढ़ लेते हैं।
मतलब ये 12 गाँव जो है वो अभी बॉर्डर पर है, ये समझो ना कि अभी वो उसमें दाखिल हो चुके हैं और कोरोना से पहले तक कर्फ्यू करते थे और अभी इनके अंदर दीन और ईमान के आसार मौजूद है। जैसे अभी आपने बताया कि बेटा नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था और दूसरा आपने बताया कि इनके घर में दरगाह की तस्वीर है, जिसका मतलब है कि इनके अंदर अभी ईमान और इस्लाम के आसार है। अगर बर वक्त इनकी फिक्र हो गई तो ये महफूज हो जाएंगे, वरना अभी नाम बदले हैं फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो इन 10-12 की तो अभी फौरन फिक्र करनी चाहिए।
मौलाना ये मेहसाणा की जमात ऑस्ट्रेलिया में गई,
हाँ
तो वो कुछ सड़कों पर दस्त कर रही होगी तो वो जीथरडी गांव का एक गैर मुखिया ने इसी मुन्ना पटेल का जो वो वहाँ पर था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कि गुजराती लोग हैं तो उसने पहचान निकाली तो वो महबूब भाई करके मेहसाणा के है, बम्बई में रहती है। वो कोरोना से पहले माशाल्लाह इनका तसलसल जारी था और खूब मेहनत है
देहात में,
हाँ देहात में। और अभी भी अवासल करके एक गाँव है वहाँ पर 60 मकान तो अपने जैसे के बाकी है, ईमान पर अमाल पर नमाजों के एतबार से बड़ोड़ा की जमातें जाती है 3 के एतबार से।
मतलब ये मुमन वही है जो वो जो मुमन कौम है उसी में से।
तो उसके अलावा ये अवासल वाले जो अब्दुल्ला भाई है और एक दो साथी है माशाल्लाह वो भी आते जाते रहते हैं। और ये दूसरी में मेन आदमी जो है दिलजी भाई पटेल, इनका अहल्या का इंतकाल सफर,
उनका असल नाम क्या था,
किसका
ये दिलजी भाई का असल नाम पूछा आपने?
नहीं, उनके बाप दादा सब मुसलमान।
नहीं, इनका भी असल नाम कुछ होगा, ये तो बदला हुआ नाम है।
वो
तहसीक नहीं थी,
वो तहसीक नहीं थी।
कल मुझे बड़ौदा के इस्तेमाल में सर ने सुनाया, डॉक्टर साहब एक थे उन्होंने सुनाया कि मेरे पास एक पेशेंट रोज आता था तो कई बार आया उसने तो कहा मेरा नाम तो ये नहीं है, असल मेरा नाम तो ये है। तो फिर आपसे ऐसा नाम बदल दिया आपने, कहा मैं जब भाड़े पर घर लेने जाता हूँ तो मुझे कोई लेता नहीं था, भाड़े पर घर लेने के लिए मैं उनका बन गया। तो अब वो होते होते फिर उन्हीं का हो जाएगा, ऐसा होता है? ये बहुत गंभीर बात है, हमें ऐसे ईमान बिखरे हुए ईमान वालों को अपने वहां बता लेना चाहिए, है ना, तो वो महफूज हो जाते। बात समझ रहे आप? उन्होंने बहुत दुख के साथ, वो डॉक्टर साहब ने दूसरी बात सुनाई कि हमारे वहाँ बड़ौदा में पूरे गुजरात के बच्चे पढ़ने आते हैं कॉलेजों में, अब बच्चों के तो खुराफत होते ही है, स्कूल कॉलेज के बच्चों के तो खुराफत होते ही है, तो वो कह रहे हैं कि और लोगों की बच्चियों में रहते हैं भाड़े से तो हम अपने मोहल्लों में लाने की उनको कोशिश करते हैं, तो ईमान वाले अपने मोहल्लों में उनको बसने नहीं देते, ये स्टूडेंट ये लड़के बहुत खराफत करते हैं और हमारे मोहल्ले में नहीं चाहिए। तो उनके इलाकों में हम गए तो देखा तो उनके वहाँ वो उनके नाम बदल कर मुसलमान लड़कियों ने रहरों के नाम रखकर उनके वहाँ भाड़ों पर घर लिए, अब हमारे वाले बसने नहीं देते, उनके मोहल्लों में जाकर वो उनके नाम से रह रहे हैं और कह रहे हैं वो इससे डरते हैं कि हमारे जिस्म से कोई ऐसा अमल जाहिर हो जिससे हम पहचान हो जाए कि हम ईमान वाले हैं और ना हमको यहाँ से निकल देंगे। तो ये हमारे दुख की बात है, ये हमारे दुख की बात है, इसलिए हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। वो डॉक्टर साहब ने भी यही सुनाया कि उसने कहा कि मैं यहाँ रहने आया हूँ, मुझे भाड़े का मकान नहीं मिलता था तो उनके मोहल्ले में उनके नाम से रहना शुरू किया है, तो मेरे पास 4-5 बार आया, उसके बाद उसने चुपके से कहा मेरा नाम तो ये नहीं है, ये है, लेकिन भाड़े का घर मिले इसके लिए मैंने ये किया। तो हमारे दुख की बात है और देखो ये देहात जिन्होंने सुनाई थी कोरोना से पहले हजरत तकसीम करते थे और ये देहात हमारे जिले में मौजूद हो और हम चैन से सो सके हो सकता है। अगर उस जगह पर मेरा सगा बाप का यह हो मेरे सगे भाई का तो हमें नींद आएगी, खाना अच्छा लगेगा। अरे बोलो भाई खाना अच्छा लगेगा, ये भी तो हमारे भाई है। इतना बड़ा मजमा अगर इसे टारगेट बना लें कि इंशाल्लाह हम इन 12 के 12 देहात और उसके अलावा और जो है इंशाल्लाह साल भर उन पर मेहनत करेंगे, जाएंगे, इनके खैरियत पूछेंगे, तो ये बस अब्बा अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगर निकाल लिया तो वो हमारे हो जाएंगे और न फिर हमारे हाथ से चले जाएंगे। इन पर मेहनत करोगे, कौन कौन नहीं करता इन पर मेहनत करने की। अभी कर्जदारी के बाद मेहनत के लिए देहात सकते हो तो जी जान से ऐसे देहात लो, हमारी जान भी लगने के लिए है, माल भी लगने के लिए है। अगर इस नबी की उम्मत को ऐसे दलदल से निकाल लिया, ऐसे दलदल से इनको बचा लिया तो दुनिया में कोई हमसे खुश हो ना हो हमारा नबी खुश हो जाएगा। हमारे बच्चे को कोई डूबते हुए को बचा ले हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है। हमारा घर का कोई आदमी जलता हो तो बचा ले हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है। भाई जलना एक बार होता है, डूबना एक बार, उसके बाद तो ईमान वाला है जन्नत में जाएगा। अगर ये साल में मर गए तो ये तो हमेशा के ले जाएंगे। अगर इनको बचा लिया तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हुजूर की कुर्बानियों से बनी हुई उम्मत है। अगर इनको हमने बचा लिया तो हमसे कोई राजी हो ना हो हमारा नबी राजी हो जाएगा, उनके हाथ से जाने कौशल मिल जाएगा। इसलिए इस उम्मत पर थोड़ा सा मौका अल्लाह ने दिया है, मेहनत कर लें करेंगे इंशाअल्लाह। आप जो है उसका नाम अच्छा सा मालूम कर लो, मुझे तो उसका नाम ओरिजिनल सुनना अच्छा लगता है, ये सुनने में भी दुख होता है।
अहल्या का
इंतकाल
हो गया था,
खबर नहीं। बोलो पटेल साहब
की अहल्या का इंतकाल हो गया था तो फिर ताजियत के लिए मैं गया था। बहुत सारे लोग
ये आपके सफर के बाद?
हाँ सफर के बाद, तो आने के बाद यानी दौरान सफर के
बाद पहुँचाई
थी उन्दर में, फिर मैं गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने मुख्तसर हिकमत के साथ थोड़ी बातचीत की, लेकिन आने के बाद वो अबासल के अब्दुल्ला भाई और ये दूसरे पटेल तीन चार इनका फोन आया कि आप आ गए तो हमको बहुत खुशी हुई।
अच्छा,
आपको वो पटेल साहब का फोन आया था कि माफ करना आपके इस्तीमा की दावत मुझे पहुंच गई थी, मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ, आ नहीं सकूंगा। लेकिन ये जितने पांच छह पटेल साहब के मकान वाले हैं उन्होंने आने का
ज्यादा किया जाए और पटेल साहब को भी बुलाने की आप कोशिश करो कि एक दो चार घंटे ही आ जाए, उनको ये माहौल मिलेगा ना तो ये माहौल भी असर करता है। हुजूर की मस्जिद में बहुत सारे आते थे, वो उनके माहौल से मुतासर होते थे। ये माहौल इन्होंने जमाना हो गया होता है देखा नहीं होता, इतने सारे टोपी कोते बजाने वाले कहाँ देखने मिलेंगे, तो उनको जरूर कोशिश करो। अल्लाह बहुत बहुत बड़ा काम करके आए, बहुत बड़ा काम हो गया। वाह भाई वाह, कितना पैदल चले?
116 किलोमीटर पैदल चले। और इंफिराजी तो
अरे भाई 68 साल का जवान आदमी 116 किलोमीटर पैदल चला।
और बाकी साथी
हमारा जवान तो घर से मस्जिद भी बाइक पर जाता है और ये 68 साल का जवान कितना पैदल चला? अरे बोलो तो सही, 116 मीटर चलना मुश्किल है, 116 किलोमीटर चल रहा है। और
409 मुलाकातें घरों में बैठते थे।
वाह भाई वाह वाह,
और आप सारे यानी कि वो ऐसे देहात के जो मस्जिद है जानी थी वहाँ पर घरों में बैठकर 409
माशाल्लाह
को सलाम किया। कोई कहते हैं कि भाई मैं बाद में वो मुलाकातें हमने लिखी
जो तफसील थी वो लिखी। अच्छा एक बात ये तो इक्का दुक्का मकान वाले थे
गाँव वाले हैं मौलाना हमारे साथ पैदल चले।
माशाल्लाह, कितने लोगों ने आपसे सर नमाज पढ़ी?
69
ठीक है सर। और खाना कितने लोगों ने आपसे सब खाया?
खाना भी काफी साथी थे यानी ऐसे गिनती नहीं थी।
आज शनि की कर दरिया में डाला कोई बात नहीं,
मौका पर आ जाते थे। एक खाते यानी बड़ौदा जी ईटों के भट्टे वाले वो यूपी के थे, हाफिज थे। एक जगह पर कपास के तिजारत के सिलसिले में हमारे वहाँ पर कयाम था तो इनको थोड़ा नरमी से समझाया तो वो हमारे साथ नमाज पढ़े। उसके बाद इनको खाना खिलाया, बोले मैं ये बादरा पट्टी पर करफी में मेरा खुद का भट्टा चल रहा है। और इनके हाथ नीचे तकरीबन बताया कि 45
ओ, 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 ओ।
तो हमने इनको फिक्र दिलाई कि भाई आप हमारे साथ नमाज पढ़े, इनकी नमाज की फिक्र करो, वो भी आपके वतन के लोग हैं, वो भी यूपी के लोग हैं। और वो हाफिज साहब बड़े मुतासिर हुए, दो तीन दिन इनका फोन भी आया था।
उसके बाद तो अभी
अब उन्होंने मुतासर होकर दो तीन दिन फोन किया, आप भी उनसे मुतासर होकर दो चार फोन कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितना पैदल चले आप?
13 किलोमीटर था।
13 किलोमीटर?
13।
आप भी चले?
मैं भी चले।
यार अब यार अल्लाह अपनी रहमत उतार दे
रहे हैं। बहुत मजबूत है।
अच्छा
हिम्मत बहुत
दी। अच्छा माशाल्लाह। टैंक में टैंक कैसा लगता था? टैंक का टैंक में
तो बड़ा अच्छा लगा।
अच्छा अच्छा, आपकी जमात में पहली बार घर में गया ऐसा कौन है? आपकी जमात में पहली बार घर में गया ऐसा कौन है?
मौलाना
अभी उसमें आप मलका भी गए थे? माशाल्लाह। आपका पहले साल लगा, 4 महीने कुछ लगे थे? किला गए थे, एक ही किला तो लंबे लंबा टाइम हो गया, लेकिन आपको जोरदार वक्त लगा दिया। आप भी पहली बार गए थे? आपका पहले कुछ वक्त लगा? चले 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 बोलो। मौलाना आपको कैसा लगा इस फसल में? अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। कितने दिन पकाया था खाना? मतलब ज्यादा पकाया? अरे मौलाना इस्लाम तुम्हारे ये फरमाते थे, बेहतरीन जमात वो है जो अपना खाना खुद पकाए। तो इनके सारे काम बेहतरीन हो गए, इनके सारे काम खाना खाना वो भी बेहतरीन हो गए। अरे वो फरमाते थे कि बेहतरीन बस्ती वाले वो हैं जो आने वालों को खाना पकाने न दें। अच्छा भाई, इस गाँव में जो दूसरे ग्राम से गया माशाल्लाह, जरा माइक ऊपर करो, आपकी सारी रुचि है। अच्छा बताओ, आपका आपका इन देहातों में ये जो हुआ उसके अलावा क्या हुआ? आप इस दौर में नहीं थे? इस दौर में कौन सी जमात दूसरी चली? आप कह रहे हैं कि दो दो जमात चली,
चार जमात चली।
अच्छा, चार अलग अलग जमात में चली। आप कौन से दौर में चले? आपकी जमात में कितने साथी थे? मौलाना इब्राहिम रहमान साहब है ये आपके मोमनों के देहात है? हाँ वो है आपके, लेकिन ये पटेल उसमें इजाफा हो गया। मतलब आपके खाते में हिसाब जो आखिर में देने का है, ये 12 गांव नहीं आ गया बराबर है? वो मौलाना हजीब साहब नहीं है, मौलाना ये आपके मुमन है। मोदी सर को तो ऐसा लगता होगा कि तो साबरकांठा बनासकांठा के साबरकांठा वालों को भी लगता हो रखता है। मोदी सर कब है? नहीं है मोदी सर। चलो अलग जगह है। आपका आपकी कौन सी शहर देहात की, आपके कौन से गाँव
की?
भरूच शहर के। मतलब भरूच शहर कितने साथी थे आपके?
6 महीने
वाले कितने? 8 साथी थे। आप खाले गाँव में गए थे, आपको कितने देहात दिए थे?
व्यायाम वाले 21 दिए थे और दूसरे मेहनत वाले, यानी टोटल 33।
अच्छा, तो 31 जो देहात थे उसमें मस्जिद मदरसे वाले कितने थे?
मस्जिद मदरसे वाले
7 थे। ये काम देहात में साल भर अपनी उमूमी जमात आती जाती है, आती जाती है।
वहाँ से रहते दूसरी ऐसे गांव के जहाँ से टाइम नहीं बन सकता था, तो ऐसा गाँव में रहते वहाँ पर मेहनत करती।
अच्छा, आपने इंसान जगहों पर रहकर दूसरों बच्चों में मेहनत की? आपने उन 7 रमजान में रहकर कितने बच्चों पर मेहनत की?
तकरीबन 14 बच्चों में
उन 7 पर रहकर। ठीक, बाकी जो बस्तियां थी आपके 21 से 7 को निकाल गए, तो बाकी बस्तियों में 14 में आप कहाँ रह गए?
चार जगह पे टेंट में थे, 3 जगह पे स्टेट के अंदर जो रूम जैसा होता है वहाँ पे
चले,
एक जगह के ऊपर जो पार मंदिर होता है ना उसमें चले।
अच्छा,
और दूसरे वो होटल है वहाँ पे 4 जगह।
आपको टेंट लेकर गए थे, फिर आपको ये सब जगह ठहरने की क्यों जरूरत पड़ी?
गाँव में जहाँ पे बाल मंदिर था तो वहाँ पे टेंट पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पे इजाजत लेकिन वहाँ पे चले थे। और खेत के अंदर भी टेंट लगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खेत के अंदर वो ऐसा रूम था पुराना, तो उसके अंदर हम रहते थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं आपको एक बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हम कोशिश करें कि हम किसी की मालिकी की जगह पर किसी के मकान पर ठहरने की बजाय हम अपनी कयामगा बनाए। क्या बनाए आप पूछोगे क्यों है ना? जब हम किसी के वहां ठहरेंगे तो हम जो अमल करना चाहेंगे, मसलन मजने को जमा करना चाहेंगे, और आप ठहरे हुए हैं दूसरे के वहां, तो आप अपनी इख्तियार से कर सकते हो कुछ, या उस आदमी को पूछना पड़ेगा आपको। हम 15 आदमियों को यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से बुला लोगे या उस आदमी को पूछना पड़ेगा? अरे बोलो तो खरे,
पूछना पड़ेगा।
नमाज पढ़वाना चाहोगे तो पूछना पड़ेगा, खाना बनाकर सबकी दावत करना चाहोगे तो पूछना पड़ेगा, और जो भी तुम करना चाहोगे उन सारी चीजों में आप दूसरों के ताबे हो जाओगे। बस वही, और अगर आपका खुद का कयाम है, अपना टैंड है, तो आपको किसी को पूछना पड़ेगा? अरे कुछ हुआ तो करो भाई, नहीं आप आजाद हो, आप जितनों को चाहे 50 को 500 को बुला लो, आपको कोई पूछना नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है कि अगर तुम किसी की प्राइवेट जगह पर ठहरे, तो आपने अक्सर देहातों में देखा होगा कि एक दूसरे के दिल फटे हुए होते हैं। अगर तुम किसी के वहां ठहरे तो जिनकी उनसे अनबन होगी वो आपके पास नहीं आएंगे। भाई अक्सर देहातों में आपने तजर्बा किया कैसे होता है, तो अगर मैंने ना सब थोड़ा बनतू नहीं हूँ क्या नहीं आऊँ, तुमने जी के वो यहीं कही लो, ऐसा होता है। अब अगर किसी के प्राइवेट जगह पर ठहरे मान लीजिए, तो जिनको उनके साथ बनती नहीं होगी वो उस जगह पर आएगा, और अगर आपने अपना कयाम किया तो आपका कयाम किया तो उसमें सब आपसे जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हजरत जो फरमाते हैं, कोशिश इसकी करो कि चाहे वो हमें ठहरने की जगह है, फिर भी हम अपना मुस्तकिल कयाम की जगह बनाए, तो हम आजादी नमाज पढ़ सकते हैं, तालीम करके लगा सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, सबको खिला सकते हैं, और सब वहां आ जाएंगे। और अगर किसी के वहां ठहरोगे तो वहां बहुत सारों को आप बुला भी नहीं सकोगे, बहुत सारे काम भी नहीं कर सकोगे, एहतियात बहुत करनी पड़ेगी आपको, और पूरा गांव जमा भी नहीं हो सकेगा। एंड इसको ख्याल करें, है ना, किसी की इबादत गहों में भी न ठहरे, जो इबादत गहें हैं वहां भी न ठहरे। हम तो अपना मुस्तकिल कह होता है ना कि भाई उन्होंने हमको ठहरने की जगह दे दी, उन्होंने ठहरने की जगह दे दी, तो हम कोशिश करें अपने अपने अपनी अपनी जगह बनाए, ताकि हम आजादी से फ्री होकर काम कर सकें। चले बहुत अच्छा, तो गोया ये सात मस्जिदें जहाँ पर आपने वो तो आबाद थी, उसका कोई मसला नहीं है। जो जो देहात आपके बाकी रह गए थे वहाँ के मुसलमानों के क्या हालत थे?
वहाँ पे ऐसा ऐसा कि तीन जगह पे हम हमारा जाना हुआ, जहाँ मस्जिद मस्जिद नहीं है, वहाँ मुलाकात में गए, तो घर में बैठ के एक जगह बातचीत, फिर जब बच्चे भी जुड़े वहाँ पे 10-11 मकान।
मैं आवाज आ रही है, ये 63 साल का जवान इतना जोर से बोलता था, तुम यार पता नहीं क्यों इतना ऐसा ऐसा बोलते हो।
वहाँ 10-11 मकान थे, तो वहाँ पे सब बच्चे और सब जमा थे, वहाँ पे बात की मस्तूरा भी बैठी हुई थी, तो दीन की पूरी बात की। इसके बाद एक दो बच्चों को बुलाया, पूछा कि तुम कलमा पूछा, हमने नमाज का पूछा, तो नमाज का कोई शकल नहीं थी। जुमा में कभी दूर कहीं कोई मस्जिद है बोले वहाँ पे हमारी शादी चले जाती है, ऐसा कहा।
अच्छा अच्छा,
और फिर वो मस्जिद यानी कोई मदरसे का भी निजाम नहीं है वहाँ पे, जो जिस गांव में यानी जहाँ पे मस्जिद मदरसा नहीं है, तीन जगह ऐसी थी वहाँ का मैं काफी जल्द सुना रहा।
अच्छा,
तो फिर किसी यानी बच्चों को कलमा पूछा बुला के, तो उनको कलमा भी नहीं आता था। अब बड़ों को इसके लिए नहीं पूछा कि वो शर्मा जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों का ऐसे ही पुराने यानी कि ये माहौल है हमारे।
आपके तालीम झलके में उनको लेकर बैठे थे, आपके तालीम झलके में आपने जोड़ने के
लोग बहुत सारे लोग हुए थे,
तो उस तालीम झलके में आपने भी कुरान पढ़ा हो, उन्होंने भी कुरान पढ़ा हो, इनके अंदर का एहसास हुआ हो,
उनको
सही करवाया माशाल्लाह।
और वो तीन जगह
तो भैया इनके हालात ये है कि हमारे से दूर है बहुत ज्यादा, और आपके कहने के मुताबिक जुमा वगैरह से भी दूर है, यही हुआ अल्लाह ने माफ
कर दिया। दरगाह है तो वहाँ पे चले जाते, तो वो समझते हैं कि हम मुसलमान जी जरिया है,
मतलब उनके दीन पर जमने का ये दरगाह जरिया बने हुए हैं, उसके जरिए से वो टिके हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तीन देहातों का हुआ, दूसरे देहातों के भी हालात कैसे हैं?
दूसरे देहातों में जैसे मस्जिद अभी है, मस्जिद मदरसा
वो तो हो गया, वो साथ वाला तो हो गया, जहाँ मस्जिद मदरसा थे उनकी बात, दूसरे चौदह में भी था मस्जिद मदरसा। अच्छा, वो गैर बानी, वो बाकी सब गया था मस्जिद में रखता था
जी, मस्जिद
खाली ये तीन में ही नहीं था,
तीन में नहीं।
तो वो जो गैर मानुष थे वहाँ आपने कहाँ कयाम किया, ये जो आपने कहा इस तरह से कयाम किया, वहाँ लोगों से मिले आप, क्या रहा मुलाकातों में, क्या तासुर रहा उनका?
मुलाकात है कि अंदर जब हम गांव में गए तो कितने लोग ऐसे भी मिले जिनका वक्त भी लगा हुआ है।
अच्छा,
वो मेजोरिटी नहीं होती तो
ये दबे हुए रहते हैं
सुबह से।
अच्छा अच्छा,
उनको बुलाया और उनको तरकीब दी अलहमदुल्ला, वो भी यानी हमारे अमल में भी जुड़े
माशाल्लाह,
फिगर भी अभी इंशाल्लाह इस्तिमा में भी बहुत सारा मजमा लेके आने वाले हैं।
तो और जिस जिन लोगों का वक्त लगा था उनसे भी मुलाकातें हुई?
उनसे भी मुलाकातें।
आप गांव में जाते थे तो ऑफिसर मिलने की कोशिश आपकी होती?
कोशिश होती थी ऐसी।
कितने फीसद मुलाकात हो जाती थी?
वैसे कुछ ऐसे लोग होते थे जो बात नहीं सुनना चाहते, ऐसे छोड़ के वैसे तकरीबन मुलाकातें होती थी, 40-70% जैसे मुलाकातें होती थी।
माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा आपने मथुरा में कहीं बात की?
मथुरा में मुस्तकिल बात नहीं की, मगर जहाँ पे जाते थे वैसे मुलाकात में, तो कोशिश ये रहती थी कि भाई मथुरा की पूरे इस तरह रूम में बैठे।
बड़ी बात है, बड़ी बात। अच्छा आपने इसी में ही बात करने की क्यों कोशिश नहीं की? चुप गए या तो ऐसे संयोग थे कि कर नहीं सके?
ऐसे कोशिश से
याद किया था आपको कि हमको कहा तो
यानी ऐसा मौका नहीं मिला,
मतलब थोड़ी सी गफलत रही उसमें।
जैसे कि ये 3-4 मकान है वहाँ पे मुस्तकिल मथुरा छूने इस तरह सब जगह बात
ये आपने सभी जगह किया होगा
सीमाई तौर पर इकट्ठा नहीं किया।
अच्छा 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 मथुरा को जरूर हम मुतवज्जे करें। मथुरा को जिन गांव में जाते हैं ना भाई, इस उम्मत में 3 तबके हैं, एक मर्दों का, एक औरतों का और एक बच्चों का। हमारे 3 काम जिंदा होने चाहिए इन तीनों में। बच्चे सब मकसद में जाने चाहिए, उसका टारगेट है। औरतें घर वजूद की तालीम करने वाली बने तो उनके अंदर दीन का शौक रखबत पैदा हो जाएगी, और मर्द तबलीग में जाए मस्जिद के अमाल में जुड़े तो 100% मदने को पानी मिलना शुरू हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि मशुरा, और उसमें सबसे जो भारी मजमा है इन तीनों में, वो सबसे बड़ा भारी मजमा औरतों का है। इसलिए कि दुनिया में मर्दों से ज्यादा औरतें हैं और औरतों से ज्यादा बच्चे हैं। और पहले तो यूँ कहते थे बच्चे मर्दों औरतों के ताबे हैं, पहले यूँ कहते थे। तो बच्चे, तो आप मुझसे पूछोगे कब क्या कहते हैं, मैं कहता नहीं हूँ मगर ऐसा हो रहा है कि मर्द भी औरतों के ताबे हैं। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ लेकिन ऐसा दिख रहा है, आप बात समझ रहे हैं। पहले यूँ कहते थे कि बच्चे किसके ताबे हैं, औरतों के ताबे हैं। अब मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि मर्द भी औरतों के ताबे हैं, मगर ऐसा। अच्छा बताओ, आपके घर में बेटी का रिश्ता आया, आप चाहते हैं वो रिश्ता हो जाए, बीवी चाहती है न हो, क्या होगा ये? अच्छा वो रिश्ता आया, बीवी चाहती है हो ही जाए, आपकी राय कम है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आजकल मर्द भी उनके ताबे हैं। आप समझ रहे बात, ये कह रहे 100% लो। इसका मतलब अगर मर्द भी उनके ताबे हो गए तो अगर वो औरत के जहन बन गया तो मर्द का भी बन जाएगा और बच्चों का भी। वो एक कमरा था, उसमें चारों जगह आरसी लगी हुई थी, आई भी क्या लगे हुए थे, उसमें चकली थी, चकली उड़ती थी, वो यहाँ बैठे थी, एक बैठ हुई थी तो इसमें भी दिखती थी, उसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे, चारों आरसियों में वो चकली दिखती थी। अब पकड़ने की क्या थी, तो एक को पकड़ लो चारों पकड़ आ जाएंगे, फिर को पकड़ लो वो जो ऑरिजिनल है उसको पकड़ लो, तो जो चार आरसी में उसकी उसका छाया पड़ता है ना वो चारों, तो ऐसा ऐसा हो गया, वो एक को पकड़ लो चारों पकड़ के आ जाएगी। अल्लाह पाक ने औरत के अंदर जहन बनाने की अजीब सलाहियत रखी है, ये फहम तसीम उसका अजीब गरीब होता है, क्योंकि उसको घर चलाने का होता है। घर में 5 छोकरे हैं और 5 छोकरियां हैं, 10 के 10 के विचारधारा अलग होती है, मिजाज अलग, तबीयत अलग। माँ जो होती है ना पांचों के पांचों छोकरों को संभालती है और पांचों छोकरियों को भी संभाल लेती है, फिर 5 छोकरों की 5 बहुएं आती है उनको भी संभालती है, और 5 छोकरियों के 5 जमाए आते हैं उनको भी संभाल लेती है। मर्द नहीं संभल पाता, वो तो जरा बात आवे तो पता नहीं उखड़ जाता है। लेकिन वो और ऐसा जन अब देखो ना, ये फिरौन उसने मूसा अलैहिस्सलाम पैदा न हो इसके लिए कितने बच्चों को मार दिया, लेकिन उसको लगा उसकी बीवी ने पहना दी। जब संदूक चलता हुआ घर में पहुंचा तो सामने पेटी खोली तो उसमें से क्या निकला, बच्चा। उसको यकीन हो गया यही मूसा है, यही मूसा है, तो उसने पूरा इरादा कर लिया कि इसको खत्म कर दें। बीच में अरे कौन आई, अरे बोलो तो खरो, बीवी बीच में आ गई और उसने जन बनाना किया। जन बनाकर क्या कहने लगी, ना ना ये जो जो, जो खानदान के बच्चों के तुमको कहा है, कहा इन्होंने, वो तो इस तरफ रहते हैं और ये संदूक तो इस तरफ से आया है, अगर उस तरफ से होता वहां से नहीं आता, ये वो नहीं है। वो कहना ये यही है करना, ये नहीं है। अल्लाह की शान उसको औलाद नहीं थी, उसको औलाद नहीं थी। एक जगह मैंने पढ़ा शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की किताब में कि अल्लाह पाक ने, वो चूंकि औरत नेक थी अल्लाह ने उसको तो जिंदगी भर उसके साथ हमबिस्तरी कर ही नहीं सका था। जब भी वो इरादा करता था तो अल्लाह पाक एक जिन्नी औरत को पैदा कर देते थे, जिन्नी को भेज देते थे, वो उसके साथ करता था और ये समझता था मैंने अपनी घरवाली से जरूरत पूरी की। उनकी किताबें मैंने पढ़ा और हर नेमत उनकी किताब अपने मजमून मैंने पढ़ा है, जो तो बड़ा बड़ा दकीक मजमून था, बदहरी की बात हो गई है। तो मैं कह रहा था उसको हालात नहीं थी, जब हालात नहीं थी तो चाहता था कि हालात नहीं है, बीवी कहने लगी हमारे घर को हालात नहीं, इसको हम बेटा बनाएंगे। तो इसने ऐसी जहन साजी की कि ये बच्चा पैदा ना हो उसके लिए वो तो हजारों को मार चुका, और जब वो उसकी गोद में आया तो बीच में बीवी आ गई तो वो नहीं मार सका, ऐसा जहन बनाया। एक मतलब गोद में दिया और डाली से खेलने लगा और नाक में उंगली डाली ने ऐसा ऐसा किया, कभी की अभी से ऐसा सब करता है, ये वही होगा तुमको चढ़ गई है। तुमको छोकरा तो ऐसा ही होता है, क्या छोकरा ऐसा होता है तो वो तो अपना के साथ ऐसे खेलता है, ना मुझे गड़बड़ दिखती है। तो उसने कहा नहीं भाई ये तो ऐसा ही होता है। तो फिर कहा कि तुमको ना समझ में आए तो तुम इंजन ले लो। तो उसने एक प्लेट में अंगारे रखे और एक प्लेट में मोती रखे, हीरे रखे, क्या देखते हैं क्या खाता है। तो मुसा इस्लाम को प्लेट दी तो वो हीरों की तरफ हाथ रखने गए, तो जब इस्लाम आए और अंगारे पर रख दिए, उन्होंने लेकर मुंह में रख दिया तो लुकनत हो गई। फिर उसके बाद लुकनत जबान में हो गई। तो उसको यकीन हो गया कि हाँ ये छोकरा तो ना समझे, इसने जैसा करता है। तो उस घर में 40 साल तक रहे, कितने साल तक, और ये सबका जिंदगी ये 40 साल रखने का माहौल किसने बनाया, अरे बोलो तो खरे, औरत ने। तो औरत ने ऐसी समझाने की, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा सहारा जो बनी कौन बनी, अरे खरीदा जब उनको वर्षा इतने नफल ने कहा इनके तो मक्के वाले दुश्मन हो जाएंगे और मक्के से इनको निकाल देंगे और रिश्तेदार भी निकाल देंगे। तो हमारे नबी एकदम दहास को लाकर मने हूँ करे, मने मक्का वाला कार्य मुख्य है, मने मारी फैमिली कार्य मुख्य है। तो उनकी बीवी ने देखा कि ये जरा ऐसा महसूस कर रहा, एकदम बीच में आ गए, ना 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 आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर क्यों नहीं होगा, उसकी दलील दे रहे थे उनकी धड़ाधड़ दलील है। तमें तो यतीमों ने पढ़ाओ छो, बेवाओं की खबर रखो छो, मुसाफिरों ने रस्तो बताओ छो, मेहमान नवाजी करो छो, लोगों ने बोझ उठाओ छो, लोगों ने बच्चे सुलह कराओ छो, तहमिलुल कल तकसिबुल मादूम तकरीब भाई एक साथ दलील आपा मानी। इतनी तसल्ली दी बुजुर्ग को, तसल्ली हो गई। ये पहला दिन है नबुवत के इजहार का पहला दिन, और तसल्ली कौन दे रही है, अल्लाह बोलो तो खरे, अल्लाह चाहते तो हरत उमर जैसा मजबूत पहलवान मर्द दे देते, लेकिन अल्लाह ने तसल्ली का जो सहारा बनाया वो किसको बनाया। और औरत का इतना वजन होता है तो हम औरतों के जहन बनाने में हम कमजोरी ना बरते हैं। इसलिए हमारे हजरत कहते हैं हर जो वहर वो बोल रहे हैं मुस्कुरात रहती है और वहां तालीम घर का नहीं है, 15 दिन में जरूर उनमें बात करो ताकि उनका जहन बन जाएगा तो मर्दों में मददगार बन गया। अभी इस सफर में पता चला कारगरियों में तो मर्दों को मुलाकात होने गए तो आ नहीं रहे थे, फिर मसूरत को इज्तिमाई कहीं प्रोग्राम किया, तो इज्तिमाई प्रोग्राम के फजर में भी वो मर्द आए, मगरब में भी आए, ईशा में भी आए, वो प्रोग्राम के बाद वो तो असर होता है। और लपाट ने औरतों में ये समझाने की ताकत रखी है, और बच्चे तो है ही उनके ताले, बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। अपने किसी को पूछे तुम्हारी भाषा कौन सी, क्या पूछते हो पितृभाषा कौन सी है, ऐसा पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, क्यों बाबा की बोली अलग है, बाबा की बोली अलग है ना, उसके ऊपर पड़गी और पड़खाया तो माँ का ही पड़ता है। मदर टंग, मादरी जबान, मातृभाषा। तो जिस बस्तियों में भी रहो मसूरत में मेहनत कर रहे को आप मामूली चीज ना समझो। इसलिए हमने इनसे पूछा तुमने मसूरत में बात की, तो आप भी आइंदा जब भी कहीं भी जमातों में जाओ और आपकी जमात में ऐसे साथी हों और वहां इज्तिमाई तालीम खेल के ना होते हों तो वहां जरूर मसूरत में बात करने की कोशिश करने की। इन्होंने माशाल्लाह ये तो अच्छा किया कि जब मर्दों से बात करते थे औरतें सुने इस तरह से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ माशाल्लाह। कहीं अजान नमाज शुरू हुई किसी देहात में, किसी जगह पर अजान नमाज शुरू हुई, लेकिन कोशिश करने की वहीं के किसी आदमी को इमाम बना दो तो
मसला
नहीं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप दो दिन आप उस बस्ती में रहो तो उसमें कोई छोकरा जो होता है उसने थोड़ा बहुत पढ़ा और दूर सोचना सिखा देने की, کیونکہ بھائی سرد نماز میں سرتے کتنے رکعت میں پڑھنے کی ہوتی ہے, دو میں ان ناطین کو بول کر سکھا دو, وہ امام صاحب ہو گئے اور کیا کیا چاہیے. اتنے دیہاتوں میں ہم مولانا کہاں سے پہنچائیں گے, لیکن دو سوتر سکھا دیے, لوگ تو چلے دو سوتر سکھا دیے, مولوی صاحب ہو گئے. کہتے مطلب بڑے مولوی صاحب کو دیں گے تو بڑے مولوی صاحب پڑھائیں گے, ابھی چھوٹے مولوی صاحب تو پڑھا لے تو کر دیں گے, کیا کر دیں گے. ہر ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد بھی ہر بھی سب کام ہڑوا, ہمارے نبی علیہ السلام جہاں جاتے تھے مسجد بنا دیتے تھے, کوبا گئے کوبا میں دو چار دن ٹھہرے وہاں بھی مسجد بن رہی. ہاں مدینہ جاتی پہلے مسجد بنائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جن بستیوں میں اذان نماز شروع ہو جاتی ہے وہ بستیاں شیطان کی اثرات سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے سنا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے, پانچ وقت جب وہاں اذان ہوگی نماز ہوگی تو اس کے اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی موجودگی میں کوشش کریں کہ ان کی اذان نماز شروع ہو جائے. جب اذان نماز شروع ہوگی تو ایمان والوں کے جمع ہونے کی ایک شکل بن جائے گی, ورنہ وہ بکھرے ہوئے ان کو کوئی جمع نہیں کرتا. دیکھو ہم سب کو دین نے جمع کیا, دین میں اگر ہم جمع ہوتے تو دین کی یہ تاثیر ہے کہ وہ سب کو جمع کر دیتی ہے. اس لیے کوشش کرنے کی خیر بچوں اور اس کے بھی آسان شکل, کوئی کامن جگہ جہاں تم ٹھہرے ہو وہاں اجتماعی نماز پڑھو, دو تین دن آپ ٹھہرے نماز پڑھو. اس زمانے میں بستی والوں کو گش کر کے لاتے رہو, گش کر کے زہر میں لائے, اثر میں لائے, مغرب میں, تو دو دن جب انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی اسی میں ان کو عادت پڑے گی دو دن کے. دیکھو ہم یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ورنہ یہ کہتے ہیں مسجد تو دیوار ہونی چاہیے, چھت ہونی چاہیے, ایک تصور بھاری بھاری ہوتا ہے. اب تم نے پڑھ کے بتائی کہ کوئی ضرورت تک نہیں ہے, اب تم تو زمین پر بھی پڑھ سکتے ہیں, تو ان کو مسجد کا ہیڈ ایک نکل جائے گا کہ ایسا ہوتا ہے. اور وہی امام صاحب کے بعد اگر موقع ہو تو کوئی بچہ دیکھ لیں جس کو ایک دو سوچے آتی ہو تو اس کو پکی کروا دیں اور اس کو اپنی موجودگی میں دیکھو یہ اپنے امام صاحب ہو گئے یہ نماز پڑھائیں گے. اگر اس کو آ گئے ہم بھی اس کے پیچھے پڑھ لی انہوں نے بھی پڑھ لی تو ان کو سنتوش ہو جائے گا کہ ہمارے امام صاحب ہو گئے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, تو اس کی کوشش کرنے کی کہ وہیں کے کوئی چھوکرے کو کوئی آدمی کو تھوڑا بہت بھی آتا ہو دو تین دن میں پکا کر دینے کا رٹا دینے کا رٹا دیا تو اللہ کرے کہ کوئی بستی ایسی بھی ہوگی کہ جو بہت ہی سستی ہوگی اس کے لیے اللہ سے مانگے گی. ورنہ اکثر بستیوں جیسے ابھی آپ نے نہیں بتایا وہ قرآن بھی پڑھتا تھا, ایسے کچھ نہ کچھ نکل آتے ہیں جس کو ایک دو صورتیں یاد ہوتی ہیں, کیونکہ مسلمان ہے کچھ نہ کچھ کبھی سیکھا ہو تو اس کو امام بنا دینے کا, تو یہ آسان ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ ہر بستی میں اذان نماز شروع ہو جائے. چل اللہ جزائے خیر. تو ہوا
15 سے 20 ساتھی رہتے ہیں بستی کے سمجھے, تو ہمارے ساتھ کی ملاقات کی گئی ہے تو پتا چلا کہ وہ شام کو ہی کرتے ہوتے, تو شام کو گئے ان کے سامنے بات کی اور تین دن مسلسل ان کے ساتھ امام کر کے نماز پڑھی
ماشاء اللہ,
اور انہوں نے پھر وہ بچھانے کا بھی لیا ہے.
واہ واہ دیکھو ہو گیا, آپ نے تین دن ان کو ساتھ لیا تو تین دن میں ان کے اندر وہ چنگاری جاگ اٹھی. وہ چنگاری ہر ایمان والے میں یہ چنگاری ہوتی ہے غیرت, اس کو ذرا گھوٹنے کی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے آپ بولتے کہیں کون تم کیا بولتے ہو, ہم تو گھوٹنا بولتے ہیں گجراتی میں, تم کون سی بھاشا بولتے ہو میں نے گھوٹ بوجھ پڑے نا تب ہوں بولو چھو تو تمہیں ہم جواب کے نہیں آ رہا بھائی. اپنے چائے ہوتی ہے چائے اس میں شکر ڈالو, شکر کیا کام کرتی ہے
میٹھا
میٹھا, پر اس کو گھوٹو نہیں ہلاؤ نہیں یوں پڑی ہوئی چھوڑ دو تو چائے تو چائے کے اندر شکر تو پڑی پر وہ میٹھا ظاہر کرے گی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا ذرا ہلانا پڑے گا گھوٹنا پڑے گا تو وہ اپنی مٹھاس کو ظاہر کر دے گی. ایسے ہر ایمان والے کے اندر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ایمان, اس کو ذرا گھوٹ دو تو بس وہ اندر سے ایک دم جاگ جاتا ہے, وہ گھوٹنا پڑتا ہے تھوڑا سا. بات سمجھ آ رہی نہیں آئی تعلیم کے اب انہوں نے کیا کہا وہ نہیں پڑھتے تھے لیکن تین دن ان کو اپنے ساتھ پڑھائی تو وہ چنگاری جاگ اٹھی. آپ جونا زمانہ میں چھ جونا زمانہ میں ہر نئی جنریشن میں تو امر جیو مارے تو نہیں آج سفید بار والا ہے ત્યાં તો માં રાત્રે સુવે તો ચૂલામાં રાખોડ હોય ને એ રાખોડાના અંદર ચિંગારીઓ દબાવીને મૂકીને સૂતા હતા જો દેખાય હે. پھر کیا ہوتا تھا صبح کا تو ڈھونڈنے جائیں گے وہ راکھوڑے میں جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں دبی ہوئی ہے صبح کچھ رکھ کر اس کو یوں پھونک ماریں گے وہ چنگاریاں آگ لگا دے گی تو وہ چنگاریوں سے چولہا سڑک جاتا تھا. یہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے کتنا کتنا دیکھا ہے دیکھو کہ جونے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ رات کے بچے ہوئے کال سے وہ آگ میں دبا دیتے تھے وہ کتنا ہے راکھوڑے میں અલગ તમને નહીં સમજમાં આવી વાત, જોયું નહીં હોય એટલે નહીં સમજમાં આવી. આપણું નક્કી બજાવું છે શું કરશું, આપણા ભાગમાં આવું નથી આવ્યું. તો હું આશા કરતો હતો કે સિંગારિયા આગ જલા દેતી હતી, બોલે આશા હતો ને. તો હું સિંગારિયા ફૂંક મારને કે જરૂરત હે, બસ સબકે દિલ મે ફૂંક મારને કે જરૂરત, થોડી ફૂંક મારે હે વહી જલા જરૂરત હે. કેટલા કરે પાદર 101 और इनका भी कितना चले? अच्छा नेकेकर और दरिया में डाल. चलो अल्लाह के वहां अल्लाह का आपने नहीं गिना मगर अल्लाह ने गिन लिया, फरिश्ता ने भी गिन लिया और अल्लाह के वहां छपा हो गया. अल्लाह इसका कबूल फरमाए. क्या नेकेकर क्या लोग है, उन्होंने शिकायत की कि आप लोग वर्ष में एक एक बार आते हो, ऐसा कहा. फिर आपने सुबह कर ली, कब भाई ऐसी भूल नहीं करेंगे. वाह 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 वाह, अभी तो बस्तियां बेचते बेचेंगे. ये कहने लगे हमने तो 3 दिन की जमात एडवांस भेज भी दी. आंख खोली तब से सुबह, आंख खोली तब से इनकी सुबह हो गई. हमें अभी सुबह करने की है, इस मजलिस के बाद सुबह इनकी तो हो गई. वाह भाई बहुत काबिल मुबारक मान लो गया. सादे खुश थे आपके, कोई पहली बार चला आपकी जमात में? कौन पहली बार चला? तुम्हारा पहले कितना टाइम लगा है? एक कितने बार 40 दिन लगे तुम्हारे? 4 महीने. आप खड़े हो जाओ, आप 4 महीने गए थे वो और ये जोन में चले वो, ये दो में
45 दिन.
हाँ 10 दिन आपने इसमें लगाए,
पूरा चिल्ला लगाया.
फिर पूरा चिल्ला किया तो आप 2 चिल्ले वहां लगा कराए, 1 चिल्ला यहाँ लगाया.
145 दिन
इनको 100. अच्छा वधारा टाइम लगाया तुमने. अच्छा 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 और मजा आया. तो आप ये बताओ आपने जो वो सवारी वाले लगाए हो और इनके साथ लगाए हो, ये दोनों में क्या फर्क था? हाँ आपको कैसा लगा वो जो आप गए वो और इसमें क्या फायदा हुआ आपको? ईमान की तरफ के होते और चलना अमल है, चलना भी आप चलने को अमल ही कहते. हाँ वो सुस्ती कहेंगे कि भाई जिस दिन चलना नहीं हुआ उस दिन तालीम हुई कि नहीं हुई, दोपहर की तालीम हुई कि नहीं हुई, उस दिन होते थे ना. अब मान लो कि तुम तालीम के टाइम में 5 घंटे चले, एक आदमी ने 5 घंटे बैठे, तो उसका अमल नहीं कहेंगे. बहुत ही अमल है, बड़ा अमल है. कौन चलता है? कोई चलता है? आज का छोकरा तो घर से मस्जिद में बाइक लेकर जाता है. आप भी बाइक लेकर नहीं जाते?
सलीम भाई
अच्छा चलो बहुत अच्छा माशाल्लाह. तो आपको यहाँ ज्यादा फायदा होगा. चलो अल्लाह अच्छा करे, सच्चे सच्चे. क्या नियत करते हैं? शिकायत को बस्ती वालों की दूर कर देंगे. उन्होंने ये कहा था ना कि साल में 100 को शिकायत दूर कर दो. बहुत अच्छा, बहुत जोरदार आदमी है, ब्रैकेट लगा देता है. कोशिश का ब्रैकेट ऑफिसर बनेला काम आया. चलो बैठो कोशिश में. मैंने कहा कर दोगे? तो कहा कोशिश करेंगे. ऑफिसर है तुम तबलीग वालों ने ऑफिसर को बेचारे को गलत ऐसी कर दी. देखो करे यार हम आजमगर का इज्तिमा था तो वहाँ हिम्मत में सब लगे हुए थे. पता चला कि जुम्मन कर लू सब है. फिर डॉक्टर सनाउल्लाह साहब ने तारा करवाया, ये पी एच डी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. मैंने कहा सब्जी ने सबको एक भाव में तोड़ दिया है, फ्यूचर ऑफिसर को भी तोड़ दिया. तुमने देखो तो खेरे अल्लाह खुश रखे. मैं ना आपकी जमात के बाद किसी को नहीं कहा. મારી સાથે ખેડૂત આપણે ઉભા રહ્યા હતા. શીશું ક્યાં બેસી જાઓ? મળે અહીંયા ના તમારી જગ્યા પર બેસી જાઓ. તમે તમારી જવા કઈ નહીં હતી? દેવલા અચ્છા 8 સાથે 4 મહિના વાળા કેટલા છે?
4 મહિના
એક હિસાબ રૂપિયા. કોણ સે ગામ મેં આપે? અચ્છા માશાલ્લા. આપ કોણ સે ગામ મેં ગયે થે? બાગરા. આપકો કેટલી બસ્તિયાં દેખી?
હમકો 20 બસ્તિયાં.
ઉસ મસ્જિદ મદરસે વાલે કેટલે થે? ये जो 19 बस्तियां थी जिसमें से जहाँ मस्जिद मदरसा था वहाँ साल भर जमात आती जाती है अपनी।
इसमें से क्या ऐसी बस्तियां थी जिसमें जमात आती जाती?
बाकी बस्तियों में नाने की वजह क्या थी? कोई बात नहीं। आप उन सब बस्तियों में से कया कितनों में आपने काम किया है?
हमने कया उसमें से लगभग 18 बस्तियों में काम किया।
18 में किया? अच्छा, आपने वहाँ कहाँ कया किया? आप लोग गए ना 18 बस्तियों में, और अक्सर घर आपके कहने के मुताबिक अक्सर घर मांग सकते, ठीक है? तो आपने वहाँ कयाम टैंड लेकर गए थे? टैंड लेकर गए थे। आपने कहाँ कयाम किया वहाँ?
हमने ज्यादातर बस्तियों में बाढ़ जो नेर है वो पानी की वहाँ कयाम किया है।
मतलब अपने हिसाब से पड़ाव की जगह आपने तलाश की, यही हुआ
जी? ऐसी दो बस्तियाँ थी जहाँ से मानुष आदमी होते हैं उन्होंने अपना जो ये वर्कर लोगों के लिए
उनकी जगह वहाँ ठहराया। तो भैया 19 में से दो जगह वो हुई जहाँ बस्ती वालों ने आपको ठहरने की जगह दी, बाकी 17 जगह पर आपने अपना टेंट वगैरह लगाया। चलो अच्छा किया माशाल्लाह। अब ये बताओ कि उन बस्तियों में क्या काम हुआ?
हम लोग वहाँ से पहुँच के थोड़ा देर आराम करके 15-20 मिनट का ब्रेक लेके बाद में हमारा मिस्टर जो दो दो की दूरी बनाते थे और बस्तियों में बारी बारी देखते थे
माशाल्लाह,
और मुलाकात होती थी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की। और
तो आप जिन बस्तियों में गए उस बस्तियों में 100% लोगों से मिलने की आपकी कोशिश होती थी? आपने कितने टका तक पहुंच जाते थे? 100% की कोशिश होती थी?
100% की कोशिश होती थी लेकिन 35-40% तक लोगों को मुलाकात होती।
200 की क्यों नहीं होती थी?
और लोग बात सुनते भी नहीं थे, किसी को सलाम करे तो वो सलाम का
कोई बात
नहीं देते थे,
कोई बात नहीं,
ऐसे निकल जाते थे।
मतलब आपकी कोशिश पूरी रही। अच्छा, आप उन घर मानो मस्जिदों में कभी नमाज पढ़ने गए? इक्का दुक्का एक दो इस तरह से?
जी, हर मस्जिद ने ऐसी कोशिश की थी, खुद मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन वहाँ से कई जगह ऐसी थी जहाँ पुलिस एक दो जगह पे थे ऐसी पूरी जमात में नमाज पढ़ी।
अच्छा,
दो दिन रहे तो
वाह वाह वाह
में नमाज पढ़ी।
वाह वाह, बड़ा काम हो गया भाई। सारा एक जमात के इलाके में गई तो उस इलाके वालों ने बात सुन के राजा ने बात की और आखिर में माटी तगारे में दी। क्या दी? ये देश अपना हो गया, उसने माटी दे दी। तो देश में क्या होता है? माटी होती है, जमीन अपनी हो गई। वो नहीं थे, उन्होंने कहा था क्यों आए हो? तो हम तुमको लोगों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी के लिए वो बातें कही ना जो खुतबा पड़ा, उनको अभी में माटी दी थी। उन्होंने नेकफाली निकाली। क्या नेकफाली? कि उसने तगारे में क्या माटी दी, उसका देश दे दिया उसने अब तुमको। तो आप उसके मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के आए तब क्या समझते हो? वो तो आपकी हो गई। अल्लाह तुम्हें अंदर फौज मुखिया आया। हमारे एक बुजुर्ग सुना रहे थे जब ये रशियन इलाका जब और था ना, तो हजरत ने कहा तुम जमात में जाओ और वहां अल्लाह का नाम लेकर फिरो, तो वो फिरना ही काम कर देगा। तुम फिरने ने काम कर दिया। तो आप अगर उनके मस्जिद में गए,
हमने 5-6 घंटे तक बिताए।
अच्छा, अंदर इतना रुके? वाह भाई वाह वाह भाई, वो अच्छा अच्छी शक्ल बनी था, आपने अंदर दाखिल होने की तबील बनाई माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह
जब निकल रहे
जी 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 जी,
तमाम बच्चे के साथी उनकी मुलाकात हुई थी, इमाम साहब उत्तर मैंने सलाम किया, मौलाना हम इस तरीके से आए आप दुआ करना।
अच्छा, इज्तिमा के दुआ के गुजारिश करने आए माशाल्लाह, और उन्होंने कहा जरूर यूँ। वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह। तो आपकी 35-40% मुलाकातें होती थी और जिनको बात सुननी होती थी सुनते थे, बाकी जिनको नहीं तो नहीं, है ना? कोई बात नहीं। उन बच्चियों के मुसलमानों के हालात कैसे थे?
हम लोग ऐसे छोटी बस्तियों में जहाँ मुकामी मुसलमान आते थे, लेकिन जो ये बिहार यूपी के जो मुसलमान आते थे यहाँ जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, वहाँ जब हमने किया गया तो बेचारे को मुसलमान का कुछ पता है, इन्होंने उन लोगों की नमाज का कुछ निजाम है।
फिर आपने क्या किया?
हमने एक बस्ती में तो जाके उन लोगों को जितने भी मुझे वहाँ तक उनको बुलाने जाते थे नमाज की तरह
माशाल्लाह,
तो क्या कहते आते थे हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ नमाज भी पढ़ी और उनके नंबर भी लिए, हमने उनसे कॉन्टेक्ट भी किया था। हमारा मिस्टर
लोग आपके साथ आए नमाज में
जी?
कितने लोगों ने आपके साथ
क्या आते थे?
पूरे सफर में कितने लोगों ने नमाज पढ़ी?
पूरे सफर में तकरीबन हमारे साथ 40 आदमी हो गए।
माशाल्लाह 40। और आपके साथ अमल में कुछ जुड़े तालीम में इस तरह?
30 लोग जुड़े थे।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इन बच्चों में कहीं अजान नमाज भी होती हो और आपके जरिए से वहाँ अजान नमाज कहीं शुरू हुई हो ऐसा? कैसे? दो ही बच्चियाँ थी जब मस्जिद नहीं थी।
और उसने सुबह में साथियों को मिल जाए, एक ही साथी को बुलाकर एक साथी भर गया।
अच्छा अच्छा अच्छा।
शाम में असर के बाद फिर वे तो कोई मिला नहीं।
अच्छा,
एक दिन हमने कयाम किया था और दूसरी बस्ती जो थी उसमें 3 साथी थे, उसमें से एक साथी को मुलाकात हुई, 2 साथी मौजूद नहीं थे।
चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो कहीं नक्सराज का प्रोग्राम हो?
ये नक्सराज का प्रोग्राम हुआ इस जगह पे, उसमें 10 वाले
ये जो साथी है।
नहीं तो आप ही खड़े हो गए।
तो सुबह में हम गए, ये बेचारे अपने अपने कमरों में रहते और कमरे में काम करते। तो हम 4 साथी गए, 2 साथी एक कमरे में, दूसरे 2 साथी दो कमरे, इनके कमरे में बैठ करके हमने आधा घंटा तक बात की उनसे। क्योंकि वो कमरे में कुछ हो गया था तो उनकी छुट्टी थी, तो उस वक्त गए नहीं थे वो नौकरी पर।
अच्छा।
हमने उनका जहन बनाया कि भाई हम करते यहाँ
है, यहाँ जाओ,
यहाँ आप लोग आ जाओ हमारे पास, रमान हम ना धोकर के आएंगे। खैर वो नहीं आए उस वक्त। फिर हम खाना लेकर के गए इनके लिए, बचा हुआ था तो दोनों जगह गवर्नमेंट ने खाना दिया। जब मैं गया था वो गुस्से की तैयारी कर रही थी
आपके पास आने के लिए।
माशाल्लाह। तो के मौलाना हम तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे पास आने के लिए तालीम में, तो अलहमदुल्ला जब तक उन्होंने गुस्सा लेके वहाँ तक हम बैठे रहे वहाँ पर, वो गुस्सा जब तालीम में गुजर किया फिर उसको साथ में लेकर के आए और फिर हमारे तालीम में जुड़े। फिर जोहर की नमाज में लेने के लिए गए,
माशाल्लाह वाह वाह वाह।
उसके बाद फिर गए हम जाने के लिए, फिर मगरिब में 5 साथी आ गए।
वाह वाह वाह। ये होता है तशरीफ रखे मौलाना, ये होता है कि इन्होंने उस बस्ती में ठहर कर उनको अपने साथ लाने के लिए एक दिन में 3-4 गश कर दिए, तो आए जोहर में 4 आए, मगरिब में 5 आए। इस तरह से बस्तियों में अजान नमाज शुरू होती है। खाली हम तबलीग के कब छुट्टी कर दें तो नहीं होती। देखो ये लोग वहाँ ठहरे हुए थे तो उनके पास जाने से गुसल किया, तैयारी की, उनके साथ आए, तालीम में बैठे, जोहर पड़ी, मगरिब पड़ी, असर पड़ी, ईशा पड़ी, तो ये तरह तसलसल से अगर जमा 2-3 दिन तक इस तरह से किसी बस्ती में करे तो वहाँ अच्छे खासा एक नमाज का माहौल बन जाता है। अब उसमें तालीम के हल्कों में जरा फर्क हो जाती है, किसको कुरान आता है नहीं आता, फिर उसके नमाज की शक्ल बनाना आसान हो जाती है। लेकिन खाली हम तरगीब देकर आ जाए तो देखो तरगीब देकर आने से क्या होता है पता है? ये दोनों की जमा 10 साल से चलती है। कितने साल से? 10 साल से। अगर खाली तरगीब से वो बात सुन ले तो 10 साल में हो जाता। अमली करके करने की चीज है ये, अमली तौर पर जैसे इन्होंने किया कि अमली तौर पर जोर में गए, असर में गए, मगरिब में गए, ईशा में गए और वो लोग आए, तो उससे शक्ल बनती है। अल्लाह का कबूल। और आपने मुस्तरद में कितने प्रोग्राम किए? 1 प्रोग्राम। माशाल्लाह। दूसरे बच्चे भी चोरी किया, शक्ल नहीं बनी थी। नहीं कोई बात नहीं। तो आपने फिर ऐसा तो किया होगा कि मर्दों से इस तरह बात करो तो औरतें सुने, बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ,
जहाँ ये बात हुई मसूरत में, ये पहली दफा हुई है, इससे पहले पता नहीं कब हुई होगी।
अच्छा।
तो उसमें 7 ही घर मुसलमानों के मौलाना, 7 घर खाली मुसलमानों के। सुबह में जाते
हैं
बात करनी, तमाम घरों पर उनका जहन बनाया, वो जो खत्म मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद
एक
मिनट एक मिनट जरा बात कर लें।
फिर उन्होंने कहा वहाँ कोई बात नहीं, मेरे घर पर बात हो जाए। फिर हमने कंट्री कर जोहर के नमाज पर फिर मेहनत की, तो हमारा 7 मसला माना जुड़ी।
उनके क्या तासरात रहे?
उनके तासरात में यह कि वो कैसे नाम बहुत दिक्कतों के बाद
नहीं हो तो बात हुई, लेकिन उन औरतों ने कहा हो कि आप हमने पहली मतलब बात सुनी, आप इस तरह से रहो, हमको कभी बात करो, ऐसे क्या तासरात उन्होंने पेश किए? और कहो माशा सके। अच्छा बाकी ऐसे बात तो करते हैं कि मर्द के बाद ऐसे जैसे औरतें सुनते हो ऐसे बात करके बहुत अच्छा। आप ये सब बच्चियों में गए तो उन बच्चियों में से जिनसे आपकी बात हुई उन्होंने आपको क्या कहा? जैसे ये जमात कह रही है और ये जमात ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको साल में एक बार आते हो, ऐसा कह रहे हैं लारी वाली ने? वो 5 साल पैदल जमात चली ना वो चटाई लेकर, तो उसका नाम हो गया जमातुल हसीन, चटाई वाली जमात। तो आपके यहाँ लहरियाँ लेकर चलते थे लारी वाली जमात।
लारी वाली जमात आती है 2 दिन की अपनी, बस क्या नहीं रुक गया और वो वापस निकल जाती है।
वो जुमला सुनकर आपको कैसा लगा?
थोड़ा एहसास होता
था, थोड़ा ही हुआ।
अच्छा, यहाँ
अच्छा वो कौन बनाएगा? अच्छा अच्छा, चलो भाई ये बात समझ में आ गई तो सस्ता हो गए कि काम की शक्ल बननी चाहिए और कौन किसको बनानी चाहिए, हमें बनानी, वो तो सस्ता हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना पैदल चले?
70 किलोमीटर
माशाल्लाह। ज्यादा ज्यादा कितना चले? 14 माशाल्लाह। तो सभी खुश थे? क्या नियत करके आए? तो
नियत करके अल्हम्दुलिल्लाह,
दोनों की जमातों में अल्लाह नबी वाला दुख दर्द दे देते हैं, ये मिलना भी बड़ी बात है। एक आदमी को बाप की सेवा का दुख ही नहीं है तो बाप की सेवा करेगा? अरे बोलो, करेगा। और अगर पार्किंग का दुख आ गया ना तो कोरोना के जमाने में रास्ते पर लोग पॉकेट लेकर खड़े रहते हैं खाना देने के लिए, क्यों कि लोगों का दुख आ गया। और जब दुख नहीं आता तो सगे बाबा ऊपर रहते तो उसको भी नहीं खिलाता। तो ये दुख अगर नहीं होता तो तबलीग नहीं कर सकते, ये दुख नहीं होता तो तबलीग। मौलाना इलिया साहब को जो दुख था उनकी घरवाली ने कहा तुमको क्या होता है, क्या मुझे जो होता है वो तुझे होगा, देख के बजाय दो जागने वाले हो जाएंगे। वो दुख नबी वाला दुख, ये चलने फिरने से अल्लाह नबी वाला दुख देते हैं, अंदर कुढ़न आती है। अल्लाह बहुत मुबारक है। खाना कितना पकाया? खाना कितने दिन पकाया?
ज्यादा नहीं पकाया।
अच्छा, मस्जिदों वाली ज्यादा बरती आती। अब आप भी क्या करोगे, अल्लाह ने आपके रोजी वाले रखे थे तो आप क्या करोगे आप? ठीक है, चलो कश्य बैठ जाए। उनकी आप दावत कर रहे हैं? हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे आपका एक जुमला ज़रा भारी लगा था, लेकिन अच्छा किया आपने सुधार दिया। वो ये तक बचा हुआ खाना था वो लेकर हम गए थे, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन भाई बचेला कर रहा, आप तो क्यों करते भाई, हम दस हैं और 10 को लाने कितने का खाना बनाएंगे हम? 20 का। कोई जमात ऐसा करे पर मेरे को बस्ती वालों को खिलाना है और खिलाकर करीब करना है, और बस्ती में दूसरे 15 है और हम 10 को कितने का पकाएगा? 25 का। अब वो 15 को ढूंढने जाएगा कि आएंगे तब खिलाएगा? अरे बोलो तो खरे,
ढूंढने जाएगा
बस। तो आप ढूंढ कर लाए, अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई। अच्छा,
हमारी दावत में बहुत ज्यादा खाना लाए थे।
हाँ, अच्छा, आपकी जबान से ऐसा निकल गया था, चलो भाई उसको भूसा देते अपने। बराबर है, मेरे घर में मेरा छोटा छोकरा था वो कुछ आड़ा उड़ा करे, मैं जब तेरा सब कुछ अल्लाह लिखते हैं या फरिश्ते यहाँ सब लिखते हैं, तो मेरे पास आया और बात कराया उसने, मैं बच्चू भूसी रखे वो सारे अपने भूसी रखे बात पूरी आप। बराबर से चलो सवारी करे अंकारी जमा पति जम्बो सब मकली जमात थी। कौन से गांव में गए थे आप? पादरापट्टी में। कितने साथ थे? 8 साथी थे माशाल्लाह। आप जरा क्यों पूरे घूम रहे हो? अरे भाई हूँ मजमे मजमे की तरफ। अच्छा, अब मुझे मत देखे, उनको देखे, वो आपको देखना चाहते हैं। आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि सब आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। अच्छा, तो आपके 8 साथी थे, 1 साल वाले मौलवी साहब थे। अच्छा, 4 महीने वाले कितने थे?
4 महीने वाले
6 साथी। आपको कितने बस्तियां दी थी?
22।
कौन से जोन में?
पादरापट्टी
पर 20 बस्तियां दी थी। उसमें मस्जिद मदरसे वाले कितने थी?
मस्जिद मदरसे वाले इसमें से
12 थी। वो 12 साल भर वहाँ अपनी जमात जाती आती रहती है? जाती आती रहती है। आप वहाँ क्यों गए थे जवान जवान साल भर जाती है? तो एक तो इन्होंने जब सुनाया था इन्होंने कि हम उस मानुष बस्तियों में रहकर हमने गैर मानुष को कवर किया, आप इन मानुष बस्तियों में क्यों गए थे? नहीं, लेकिन वहाँ आपको उस बस्ती में कयाम करके अतराब के देहातों को कवर करने के मिला था या उसी बस्ती में काम करने?
कवर करने से बोला था।
तो आपने वो 12 बस्तियों में से गैर मानुष कितने देहात कवर किए?
गैर मानुष तो एक दो ही है।
तो फिर किसको कवर किया?
मस्जिद और मदरसा नहीं है, 5 घर 4 घर।
ओ शेख, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आप उन मानुष बस्तियों में रहकर आपने अगर गैर मानुष देहात कवर की है तो आप कह रहे हैं वो तो एक दो ही थे, और अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ गए थे। ऐसे कितने देहातों में आप गए?
ऐसे तो आप 20 के करीब देहातों में।
उन 12 बस्तियों में ठहर कर 12 مسجدوں میں قیام کیا اور وہاں جا کر آپ نے کام کیا, یہی ہوا؟ اچھا بات دوسری سننی ہے مجھے, یہ جو آپ اطراف کے دیہاتوں میں کام کرنے گئے وہاں کتنے مکان تھے؟
گاؤں میں 5 مکان, 2 مکان, 3 مکان.
5 والے کتنے تھے؟
5 والے قریباً 3-4 تھے.
3-4 تھے. 5 سے زیادہ والے کتنے تھے؟
1-2
تھے. 1-2 تھے. 5 دیہات گویا ہوئے, 5 والے 3 اور 5 سے زیادہ والے 2-3, برابر ہے. تو آپ لوگ ان مسجدوں میں ٹھہرنے کی بجائے ٹینٹ لے کر وہاں چلے گئے؟
وہ اصل میں وہاں سے روٹی ملا تھا کہ یہاں ٹھہر کر آسرام میں کام کرنا ہے.
اچھا, ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جہاں 5 مکان ہو یا 5 مکان سے زیادہ تو اس کو دوسری جگہ ٹھہرنے کے بجائے وہیں جا کر ٹھہر جاؤ اور وہاں ٹھہر کر کام کرو. بھائی جمبو سر کے حضرات کہاں ہیں؟ بھائی گزارش یہ ہے آپ اس کو ذرا ٹھیک کر لیں, آئندہ روٹ میں کیا مسجدوں کا روٹ نہ دیں ان کو, آئندہ اس کو خیال کریں, ان کو ڈائریکٹ اس دیہات کا ہی روٹ دیں. سمجھ جاتا تھا جماعت جہاں 5 مکان یا اس سے زیادہ کے ہوں وہ دوسری جگہ ٹھہر کر اس دیہات میں نہ جائیں بلکہ براہ راست اسی دیہات میں جا کر ٹھہرے. اس کا فائدہ کیا ہوگا پتا ہے؟ اگر آپ ملاقات کرنے جاؤ گے تو وہاں 1 گھنٹہ رہو گے, 2 گھنٹے رہو گے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے آپ رہو گے, برابر ہے. اگر آپ مستقل وہاں قیام کرو گے تو اکثر دیہاتوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مجمع مزدوری میں چلا جاتا ہے, دن بھر نہیں ملتا ہے, بولے ایسا ہوتا تھا, اب وہ ملے گا یا تو صبح میں یا رات میں. اگر آپ نے وہاں قیام کیا تو صبح شام آپ کو آرام سے مل جائے گا, اور اگر آپ نے قیام نہیں کیا تو آپ دن میں ملنے جاؤ گے, دن میں وہ نہیں ہوں گے اور رات میں آپ جانے والے نہیں ہو, برابر ایسا ہی ہوگا نا. تو اکثر وہ لوگ سے مل نہیں پاتے, اس لیے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم وہیں قیام کریں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا پتا ہے؟ آپ دن بھر وہاں رہو گے تو ان کے بچوں سے اختلاط ہوگا, وہ لوگ آپ سے, اور جو گاؤں میں جتنے ہیں ان سے دن بھر آپ فارغ ہو جاؤ گے, باقی کو رات میں ملو گے. تیسرا یہ ہوگا آپ 24 گھنٹے اس گاؤں میں اعمال کرو گے, ٹینٹ ڈالو گے, قیام کرو گے, نمازیں پڑھو گے, آپ کسی کو کہنے جاؤ یا نہ جاؤ وہ چپکے چپکے آپ کا سب کچھ دیکھتے ہوں گے, یہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسا کر رہے ہیں. ہم ابھی جماعت میں تھے تو کسی نے قبضہ نہیں سنائی, پہلے دن تو کوئی نہیں آیا, دوسرے دن نہیں آیا, تیسرے دن آئے, کیسے شام کو ہمارا سب دیکھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو. تو ہم نے دیکھا تم تو رات میں جلدی اٹھتے ہو, دن بھر نمازیں پڑھتے ہو, تعلیم کرتے ہو, اللہ کے سامنے روتے ہو, تو اس نے دن ان کا نرم کیا اور وہ لوگ آ گئے. تو جب بستیوں میں قیام ہوتا ہے تو ان اعمال کی برکت سے اللہ لوگوں کے دل کو فائدہ کھلائے. مکہ جب فتح ہوا تو لوگ جوک درجوں کے اسلام میں داخل ہوئے, تو پوچھا کہ کیوں تم داخل ہوئے؟ کہا ہم نے اس رات میں چھپ گئے تھے کیونکہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ بھائی جن کے ہاتھ میں بازی آئی ہے آج تک کا سب کا بدلہ لیں گے, تو سب چھپ گئے تھے اور انہوں نے کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا, اور حضور نے علم فرما دیا لیا ہو میاں مل مرحم, آج تو معافی کا دن ہے, اور سب نے عبادت کی حرم میں. تو وہ چپکے سے دیکھنے والے کہنے لگے ہم نے چپکے دیکھا آج حرم میں اتنی عبادت ہوئی ہے جتنی عبادت کبھی نہیں ہوئی ہے, اس عبادت نے ان کے دل کو پلٹا کھیلا ہے. تو جب ہمارا مستقل وہاں قیام ہوتا ہے نا تو یہ اثرات ہوتے ہیں. عبدالرشید بھائی یہ سارا میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ آئندہ ان بستیوں کو ڈائریکٹ دیں, کسی کے تابع نہ کریں کہ وہ یہاں ٹھہر کر وہاں کام کریں. اب مثلاً انہوں نے کہا 5-3-4-5-6 بستیاں ہو رہی ہے, اب ان 6 بستیوں میں 2-2 دن ٹھہریں گے تو یہ اچھا نفع ہوگا. باقی مسجدوں میں تو ہماری روز کی جماعت جاتی ہے تو آپ اس کو ذرا سیدھا کر لینا. چلو بہت اچھا, تو آپ نے کل کتنے بستیوں میں کام کیا؟ اس میں مسجدوں میں جو ٹھہرے وہ چھوڑ دو, 12 مسجدیں, اس کی جگہ جو 10 جگہ آپ ٹھہرے وہ کہاں ٹھہرے؟
وہ
6 جگہ ٹھہرے,
اور
عبادت گاہ تھی, عبادت گاہ تھی, اور ایک اینٹوں کا بچہ تھا. بہت اچھا ہوا, آپ جن بستیوں میں گئے کتنے ٹکا لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی؟
قریباً 70% کے قریب ہو جاتی.
واہ 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 واہ, 70%, 20% کیوں رہ جاتی تھی؟
وہ کمپنی میں نوکری کرنے والے ہوتے ہیں تو سب کوئی رات کو جاتا ہے.
اچھا, تو آپ تو وہاں 24 گھنٹے ٹھہرے تھے, تو آپ رات میں چلے جاتے, صبح میں چلے جاتے, چائے وائی پلا دیتے, آرام کر لیتے, تو نہیں آ جاتے آپ کے پاس؟
ایک دو بار گئے تھے لیکن وہ گھر والے چاہتے ہو تو ابھی نوکری سے آئے ہیں, اچھا سونے کا پتا ہے ابھی,
تو آپ نہیں پوچھ لیتے کہ کب اٹھتے ہیں یہ؟
صبح میں جلدی جاتی ہے سر, ہوتا تھا.
ہم کوشش اچھے ضرور کریں, میں آپ سے ایک بات پوچھوں, اسی کے پاس اگرانی لینے کی ہو تو آپ کیا کرو نا, کیسا کرو, چپکس کیا کرو؟ وہ گھر والوں نے کہا وہ سونے کا تو کر, ٹھیک ہے تو ابھی کوئی بات نہیں سونے تو میں واپس جاتا ہوں, ایسا کرو نہیں, اگرانی والے کو ایسا کرو, اس کے پاس کیسا کرو,
પાંચ જૂન બેસી રહે કેટલા વાગે ઉઠે છે બોલે આ ઘરે ના કરે પાંચ જૂન બેસી રહે કેમ ઉઘરાણી છે એવી તો અમારી ઉઘરાણી હે કદી ની માં ના માલ તદબીર કરે કે એવું પહેલી જમા નહીં સુના યુ ક્યાં તદબીર મૌલાના જિસર રહમતુલ્લાહ કે બયાન મેં હૈ કે તુમ દીન કે લીએ એસી તદબીર ઇખ્તિયાર કરો જૈસે તુમ અપની દુનિયા કે લીએ કરતે હો દેખો તક પહોંચને કી દેખો આપણે 70% તક પહોંચને કી તો 70% તક પહોંચ ગયે ઓર 30 વાળો પર તમારો ભાઈ ઠીક છે ચાલો આવશે જોઈ લઈશું તો એ રહી ગયા બરાબર છે આ 70 નું ના થયું તો 30 નું દુઃખ રહો તમામ ચાલો કશું તો રીતું કઈક તો થાય એવું થાય ચાલો સરસ જે 70% થી આપ લોગ અક્ષર બચ્ચો ને મિલે उनका क्या काम होता है उन्होंने आपको मिलने पर क्या कहा
हाँ और जो उनके बच्चे होते हैं वो इनके बारे में तो
भाई को सुना उन्हें यार तुम खड़े आदमी हो
सतरा के जो मौलाना उधर जो वहाँ के मौलाना जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने चाहिए
माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा
और जो
મતલબ બચ્ચો કે ઉનકો ભી ફિકર થી ઓર આપને ભી દિલાઈ દોનો તરફ સે હુઆ બહોત અચ્છા ઉનકે મથુરા મેં પ્રોગ્રામ હુઆ ઉન્હોને પહેલે કબ સુના થા પહેલે વહાં પ્રોગ્રામ કબ હુઆ થા
યે સાલ લગા જો મથુરા કી બાત હુઈ હૈ વો તો દો તીન મહિને હો જાતી
હૈ સબ હો જાતી હૈ માશાઅલ્લાહ બહોત અચ્છી બાત મતલબ જે હલકે કે રહે હૈ વો હલકે વાલે ઉસકી ફિકર કરતે હૈ લેકિન જરા મોડ હી કરતે હૈ ऐसा नहीं लगा आपको बुजुर्गों ने कितने दिन में बात करने को कहा एक महीने में मर्दों के लिए और वहाँ तालीम होती है तो जहाँ तालीम नहीं होती वहाँ बुजुर्ग क्या कहते हैं आप बोल तो खराब नहीं तो नाराज है आप बोलता भी नहीं है यार खराब नहीं है तो कितने दिन में कहते हैं 15 दिन में और वो जम्मू से चलते वाले कितने दिन में करते हैं मर्दों की बात हो रही है मथुरा की क्या बात हो रही है मर्दों के जरिए से बात हुई तो आपने जम्मूसर वालों को ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई ऐसा मत करो हर 15 दिन में कर लो तो आपने जम्मूसर वालों से कहा ऐसा तब तब करोगे अब कह दोगे अच्छा तुम्हारे बगैर में वो समझ जाए तुम्हारे को कोई वांदा है भाई भाई जम्मूसर वालों समझ जाओगे भाई आप कहने मत जाना ठीक है हर 15 दिन में जरूर बात कर लो अरे भाई ये 15 दिन तक पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुनते हैं हमारा मर्द और 15 दिन में भी एक मरतबा अल्लाह रसूल के वो बात न सुने न्याय जी महाराज रहमतुल्लाह के बाद एक बुजुर्ग सुना रहे थे तो कहते थे 15 दिन में मर्दों से भी जरूर मुलाकात करो वो पता नहीं कहाँ कहाँ की पूरा 15 दिन से बातें सुन रहा है भाई 15 दिन में तो अल्लाह रसूल की एक बार बात सुना है उसको ऐसी नौतों का कागजात ऐसा करते बनाओ कैसे 15 दिन में जरूर हो जाए जिन जहाँ तो हमें बात नहीं हुई वहाँ आपने ऐसी बात की उनके औरतें भी बात सुनी मर्दों से इस तरह से बात करने की कोशिश की सुन लेते माशाल्लाह इन मर्दों ने आपको क्या कहा इन मस्तूरात ने कुछ कहलवाया हो या मर्दों ने जैसे इनकी जमातों को शिकायत की आपको तो कोई शिकायत नहीं कि इनके साल में कई बार आते हो संतोष में कि ना उनको चलेगा तो फिर क्या कहते हैं तो फिर क्या कहते
हैं
हम यही तो कह रहे थे और क्या कह रहे थे हम इसको क्या कहेंगे ठीक है यार ये तो आते नहीं हो फिर आपने क्या नियत की ये चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं जो तुम्हारे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह इन हजरात में बहुत अच्छी खबर आज साहब ने सुनाई कि हमारी 3 दिन की जमात हम यहाँ भेजते हैं बाकी अक्सर हम देखें कि अक्सर 3 दिन की जमातें ऐसे देहातों में नहीं जाती है आबाद मस्जिदों में जाती है आबाद और दूसरी इन्होंने बात अच्छी सुनाई कि इन बस्ती जगहों पर हम 3 दिन की जमात भेजते हैं और वहाँ ठहरकर दूसरी छोटी छोटी बस्तियों को भी हम कवर करते हैं वाह 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 अल्लाह और इस्तकामत दे और कबूल फरमा दे कितना पैदल चले वाह वाह माशाल्लाह तुम तो 130 का ऐसे इधर बोलते हो 130 चले ऐसे जरा बोलो खरे बाहर से बोलते हाँ जैसे वो होता है चिल्ला बोलने वाला तो कहता है चिल्ला और दूसरा बोलने वाला चार जुम्मा कैसे बोलता है अल्लाह बोलो खरा और 4 महीने बोलने के बाद कुछ बोलता है 4 महीना
और दूसरा हल्का करने वाला कैसे बोलता है बाल जुम्मा बस बाल बस एम एम कहीं गुरु करना क्या सूर जुम्मा हाँ 130 चल रहा है कटलू मैं बोले केम क्या 130 अलग भाई 130 चल रहा है तो मैं कहीं 130 फुट थोड़ी चल रहा તો તમે તો એમ બોલો છો અચ્છા તમે બી એવું છે ભાઈ અલ્લાહ ને બતાવવાનું છે બીજા નું બોલે ચાલો વધારે માં વધારે કેટલું ચાલે 50 આપી જવાબ મેં પહેલી વાર ચલાવો એસા કોને જોન મેં પહેલી વાર ચલે આપકા પહેલે કેટલા વખત લગા મારે ભાઈ આપકા પહેલે કેટલા લગા ચાલવાને લગે કેટલા લગા મારી સાથે मौलाना साहब और उसके बगल में बैठे वो आपके चार लेने लग गए आप दोनों जरा खड़े हो जाओ मौलाना माफ करना हमको आपके तासरात पूछने हैं आप साल में भी गए चुम्बे चार में भी लगाए जोन में पहली बार गए कैसा लगा आपको इस जोन में और जो पहले वक्त लगाया उसमें क्या आपने महसूस किया दोनों वक्त लगाने में भाई ये कह रहे हैं किसमें अच्छा लगा तभी बोलो कल कैसा है पता है खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह और न खाया हो तो अभी कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह हम बोला ना आप तो सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहोगे तो हम क्या नहीं समझेंगे तो खाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि भूख हुआ अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या फायदा हुआ वो तो बोलना पड़ेगा सर क्या क्या अच्छा लगा मेहनत करना ये गलत और अल्लाह के जिक्र के साथ चलने में मजा आ रहा था बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है अच्छा मशाले तो बड़ी बात है कि खिदमत अच्छी लगे वरना खिदमत अच्छी बहुत कम लगती है खिदमत लेना अच्छी लगती है करना मुश्किल लगती है माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको कैसा लगा भाई आप हाफिज हैं जी हाफिज साहब आप पहले चल रहे मेरी गए हैं आपको कैसा लगा इसमें अच्छा और हाँ दिन भर आदमी जब थकता है ना तो रात की आवाजदारी में मजा आ जाता है वाह 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 और भी अच्छा था कितना अच्छा बताऊं यूं चलो ठीक है बैठ जाए अल्लाह जदाय कर रहे माशाल्लाह जमातों ने बड़ा मजे का काम किया तबीयत खुश हो गई उससे ज्यादा मुझे बड़ी खुशी क्या हुई पता है आपके जोन पहले हम आते थे तो सुनते थे कपड़े फाड़ दिए डंडे मारे हाथ तोड़ दिए लहरी ऊंधी कर दी खाने में कचरा डाल दिया पकाया हुआ खाना ऊंधा कर दिया लोगों ने बात नहीं सुनी बोलो यही कर्जदारी होती थी आप हजरत की कुर्बानियां चौट गई आप हजरत की कुर्बानियां एक गांव आपको ऐसा त्याग जमाते थे नहीं एक गांव ऐसा नहीं मिला कि जिस गांव वालों ने निकाला बोलो मिला एक भी गांव एक गांव ऐसा नहीं हुआ जहां मुखालिफत हुई जिसको सुनना है सुन रहा है जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुन रहा लेकिन न किसी ने मारा न किसी ने निकाला न किसी ने लहरी ऊंधी की न किसी ने आकर खाने में कचरा डाल दिया न पकाया पकाया खाना ऊंधा कर दिया ये 10 साल की आपकी कुर्बानी के असरात हैं कि लोगों के दिलों को अल्लाह ने नरम कर दिया और आगे की बात बताऊं आगे की खुशी की बात यह है कि आपके अक्सर जोन अल्लाह ने नरम कर दिए वरना उन दोनों में आप जा नहीं सकते थे अब देखिए उन्होंने सुना है पहले जमात दूर ठहरती थी अब मैं करीब जाकर ठहरा उन्होंने सुना है इब्राहिम वाली जमात में घर में 6-6 घंटे अब उन दोनों में मस्जिद में जाना गुजरना मुश्किल हो गया था और अब उनके इमामों से मुलाकातें हुई और मस्जिदों में 5-5, 6-6 घंटे गुजारे तो ये कितनी खुश उम्मीद बात हो गई कितनी खुश उम्मीद बात हो गई कि आप हजरात के जोन बहुत नरम पड़ गए और लोगों के दिल भी बहुत नरम वरना सबसे ज्यादा सख्त यही था जितनी कलगारियां सुनते थे सबसे मुश्किल जो कलगारी होती थी बर्दाश्त करने वाली बर्दाश्त करने की सहने की मार खाने की वेखने की वो सबसे ज्यादा आपके यहाँ होती थी लेकिन माशाल्लाह कितना अल्लाह ने आसान कर दिया ये आप हजरात की 10 साल की कुर्बानी का नतीजा है अल्लाह इसे कबूल करना और अल्लाह पाक आगे के और जितने बाकी है देखो अक्सर ने यह सुनाया कि 70% मुलाकातें हुई 60% मुलाकात हुई और पहले भी होता था कि एक भी मुलाकात नहीं बस बस्ती में जिक्र करते हुए चलते हुए गुजर गए आपको याद है वो घरदारियां याद है आपको वो ये कहते थे घमदारी किसी ने नहीं सुनी टोला जमा हो गया एक गांव में से दूसरे गांव जा रहे थे तो एडवांस बाइक लेकर आगे आ गए और कहा हमारे गांव में आना नहीं है रास्ते पर डंडे लेकर खड़े हो जा वो घरदारियां आपको याद है कि आप लोग भूल गए
अला भाई याद है कि भूल गए कि पैदल रास्ते पर चल रही है, बाइक वाले साथ साथ चल रहे हैं, हमारे गांव में मुड़ना मत, और गांव में दाखिल होने पर रोड पर खड़े हो गए, वो सब दिन याद है कि भूल गए। और अभी ये कारोबार ये है, हर गांव में गए और 60% से मुलाकात हुई, और जो 30% के नहीं हुए उसमें भी बहुत सारों का ये आया कि वो मिले नहीं उनके कामकाज की वजह से, बहुत थोड़े ऐसे आए कि जिन्होंने बात नहीं सुनी और वो आगे पीछे हो गए। बोले यही हुआ, अब अल्लाह हमें बाकी की इसके कदर के तौफीक दे दे। अगर इतनी अगर गर्म जमीन नरम हुई हो तो अब मौका आया है बीज डालने का। किसान जो जमीन पर हल चलाता है, सख्त जमीन पर दाने नहीं डालता, हल चलाता है, हल चलाता है, हल चलाते 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 जमीन को नरम कर देता है, और नरम होती ही फिर दाने डाल देता है। नरम होने के बाद अगर दाने न डाले तो ये पड़कर छोड़ दें तो ये नरम जमीन दोबारा काठी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, फिर दोबारा हल चलाना पड़ेगा। देखो माशाल्लाह कैसे अच्छे अच्छे कर्मदारियां हैं, तो आपकी जमीन बहुत नरम हो चुकी है। अगर ये नरम जमीन पर दाने मजबूत डालने की शक्ल बना ले, उम्मीद है आइंदा साल तक खेती उग जाएगी। लेकिन ये साल को गनीमत समझना है, अगर ये साल में ये जमीन को पड़कर छोड़ दिया तो आपकी साल नवे सर से हल चलाना पड़ेगा। कोई भी जमीन को पड़कर छोड़ दो वो सफल हो जाएगी। बाकी आप देखो अभी जमीन में कितनी नरम हुई है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरह अल्लाह पाक ने आपकी मेहनत की कदर की और अल्लाह ने इतने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, अगर एक साल हमारा ये मजमा तय कर ले कि इन देहातों को अब देखो ना बाद देहात कितने काबिले रहे हैं। अब देखो जिन बच्चों में साल भर जाना नहीं हुआ, देखो किसी ने भी जमात के जाने की शिकायत नहीं की, चारों जमातों बस्ती वालों ने जमात के न आने की शिकायत की। बोलो यही हुआ या और कुछ हुआ? पहले क्या कौन सी शिकायत होती थी? पहले कौन सी शिकायत बोलो ने? जमात के जाने के लिए शिकायत करते थे, क्यों आ रहे हो? और अब शिकायत क्या कर रहे हैं?
क्यों नहीं
आ रहे हो? भाई ये तो बड़ी दुख की बात है, क्या वो लोगों के तलब हो, वो चाहते हो फिर भी हम ना जाएं। अगर ऐसे मौके पर आपने थोड़ी मेहनत कर ली, देखो ये मनो के 12 गांव ये बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, हमारी मौजूदगी में एक ईमान वाला जंग में चला जाए। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह के बाद हमने कोशिश करी कि 100 नयों को दाखिल करने के बजाय जो एक है उसको जमाना, ये ज्यादा वजनदार चीज है। और सोचो कि क्या मिलेगा? तो देखो कुछ भी, कोई शाबाशी तुम्हें यहाँ नहीं देगा, तुम्हें कोई यहाँ शाबाशी थपका, लेकिन तुम्हें अल्लाह मिलेगा। तुम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाओगे। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना बड़ा काम है। अल्लाह के नबी सलाम के उम्मती को तुम बेईमानी की मौत मरने से बचा लोगे, इससे बड़ा क्या काम होगा? अगर थोड़ा सा आपने कर लिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सलाम की जगह में उनके झंडे के नीचे जगह मिल जाएगी। हमारे छोकरे को कोई हम रास्ते में जाते हो और हम उंगली पकड़कर और हमारे बच्चे को कोई चॉकलेट दे दे, हमारे बच्चे को कोई सर पर हाथ कर दे, तो वो हमारा भी इकराम करे, छोकरे का करे, तो हमसे ज्यादा हमको छोकरे पर लाड़ कर करता है तो उससे खुशी होती है। कोई हमको कुछ दे और एक हमारे छोकरे को दे तो सच बताओ ज्यादा खुशी कब होती है? छोकरे को कोई लाड़ प्यार करे कि मेरे छोकरे को वाल करता है, हमारे नबी को अपनी उम्मत हमारे छोकरों से ज्यादा होती है। एक मतलब अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला के लिए हमारे नबी ने दुआ की मगफरत की, तो वो लोट पोट हो गई और यूं लोट पोट होकर लोट पोट होने लगी। तो हुज़ूर ने पूछा तू क्यों इतनी खुशी कर रही है? कहा हुज़ूर मैं क्यों खुशी ना करूं, आपने मेरे लिए ये दुआ की, ये दुआ की, ये दुआ की। तो हुज़ूर ने फरमाया मैं ये दुआ मेरी उम्मत के लिए रोजाना 5 मरतबा करता हूँ। तो ऐसी उम्मत के लिए अगर हमारी थोड़ी जान लग जाए, हमारा थोड़ा माल लग जाए और थोड़ा दिल दुख उनके लिए लग जाए, थोड़ा सा चलना फिरना लग जाए, अल्लाह के नबी कितने खुश होंगे। जिसके लिए हुजूर इतनी कोशिश करते हो उनके लिए हमारी कोशिश लग गई तो हमारा काम बन जाए। देखो अल्लाह पाक ने तो अपने नबी के जरिए से कहलवाया कि अल्लाह पाक इस कलमे को हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचाएगा, ये उसका स्वाद पैदा हो रहे हैं अल्लाह हर कच्चे पक्के मकान, लेकिन मेरा अपराध हो जाए ये मेरी खुशकिस्मती की बात है, वरना जो अल्लाह ने तय किया वो तो होगा ही, लेकिन हमारा अपराध हो जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती की बात है। इसके लिए मुझे 2 गुजारिशें आपसे करनी है, करूँ गुजारिश। एक तो ये तय कर लो, जैसे हाजी साहब ने कारगुजारिश सुनाई, अल्लाह आपको बहुत जजाए कर दे। इन्होंने क्या कारगुजारिश सुनाई कि हम अपने 3 दिन की जमातें इन देहातों में भेजते हैं। मेरी गुजारिश ये है आपके महीने की 3 दिन जमातों का कितना एवरेज है? 125। ये कह रहे हैं 125 हमारी इस भरूच जिले की जमातें 3 दिन की निकलती है। अगर ये 125 की 125 जमातें ये तय कर लें कि हमको 3 दिन उन देहातों में उन मस्जिदों में नहीं जाना है जिन मस्जिदों में मस्जिदवार जमात बनी हुई है, जिन मस्जिदों में मस्जिदवार जमात
उस देहातों में हमें नहीं जाना है, हम उन देहातों में जाएंगे जहां मुसलमान है और मजेदार जमात नहीं है। अगर ये 125 के 125 जमातें हम भी इस तरह से अगर निशाना बना रहे तो सच बताओ आइंदा साल तक ये 125 जमातें हर महीने लगातार अगर इस तरह देहातों में चले जाएं तो बताओ ये देहात बंजर रहेंगे। अरे बोलो देहात बच्चे बंजर रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है आज तो कह लो कि इंशाल्लाह हम अपनी मस्जिद से अपनी जमात बनाएंगे और इंशाल्लाह इन जहां मस्जिदवार जमात है उस देहात में तो जाएंगे ही नहीं, नए नए देहातों में टेंट बनाकर इंशाल्लाह जाएंगे। और एक गुजारिश है हर मस्जिद वाले टेंट बना ले। कौन टेंट? अभी तो हल्के का टेंट है ना। अरे बोलो भाई हल्के का टेंट है और अब हम क्या कह रहे हैं कौन टेंट बना ले, क्योंकि हमें अपनी जमातों को ऐसे देहातों में भेजकर आपकी जमीन बहुत नरम हो चुकी है, इंशाल्लाह थोड़े से दाने डल पड़ जाएंगे तो अल्लामा इकबाल क्या कहते थे, नहीं इकबाल ना उम्मीद, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने किश्त वीरा से। किश्त कहते हैं खेती के जमीन को, कि मेरी खेती की जमीन जो वीरान हो गई है उससे अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्त वीरा से गर जरा नम हो, नम मानी मेरा कोई पानी छिड़क दे घर जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, के जमीन में बड़ी उगाने की शक्ति है, जाफरान उगा देगी और ये उगाएगी, बस पानी छिड़कने वाले की जरूरत है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से घर जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो हम सर इंशाल्लाह पानी पिलाने वालों में बनेंगे। इसमें कौन कहता है कि इंशाल्लाह हमें अपनी 3 दिन की जमात लेकर जाऊंगा और तय कर लो कि इंशाल्लाह अब हमारी जमात मस्जिद जहाँ मस्जिदवार जमात बनी हुई है उसके अलावा के देहातों में जाएंगे। तय करते हो भाई सारे हल्के वाले तय करते हो, अपने जिम्मेदारों से ऐसे रुख मांगना हम कैसे रुख दे दो। हमें कौन मौलाना इलाज फरमाते थे कसमपुष्ट लोगों को अपनी मेहनत का मैदान मिलाओ बनाओ कसमपुष्ट लोगों में तुम्हें अल्लाह मिलेगा। तो हम किसको लेना चाहते हैं बोलो, अरे बोलो और वो किसमें मिलेगा कसमपुष्ट में, और जान अपनी लगाएंगे और हाल भी अपना लगाएंगे और लोगों की जिंदगी बड़े उसके फिक्र करेंगे। ये नबियों का तरीका, जान हमारी लगे माल हमारा लगे और जिंदगी दूसरों की। नबी ने इतना माल लगाया जब अम्मी जान खदीजा रजी अल्लाह तआला निशाने आई ना तो सोने की चांदी की ईंटें लेकर आई थी और लगाते लगाते इतना लगाया कि जिस दिन इंतकाल हुआ है उस दिन हुजूर की जरा बख्तर रहम गिरवे रखा हुआ था, 9 वसक में रखा हुआ था, 1 वसक होता है करीबन 5 मन के मुकाबले में, तो इतना अनाज लिया था और हुजूर ने जरा हुजूर अपनी वफात तक जरा छोड़ा नहीं सके थे, तो इतना ज्यादा लेकर आए थे सोने की ईंटें और चांदी की ईंटें और जिस दिन दुनिया से गए अपना बख्तर गिरवे रखा था। ये ऐसे जान लगाने की चीज है ऐसा माल, तो ये तय कर लो इंशाल्लाह पैसे भी लेकर जाएंगे बस्ती वालों का इकराम भी करेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे और 1 साल तक में इंशाल्लाह उस गांव का नक्शा बदल देंगे। भाई सब तय करते हो और खासकर ये 12 गांव मुमन के जिस बस्ती में भी है उसको तो कांटा बस देखो उनके अंदर तलब है। देखो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा लेकिन 6 पटेलों को भेजूंगा, उसका बेटा कुरान पढ़ रहा था, ये बॉर्डर पर है, ये कौन से तालुके के है करजन तालुका, ये कौन सा जानना पड़ता है 9 नंबर में, 9 नंबर वाले तो तय कर लो कि इंशाल्लाह जान लगा देंगे लेकिन इन 9 देहातों को 12 देहातों को इस दलदल से इंशाल्लाह निकाल लेंगे। कौन है करजन वाले का हाथ उठाओ भाई। अच्छा हमारा मास्टर जो भी है ये हमारे वहाँ था पूरे गांव को ये हरकत में लाया है और सबसे ज्यादा हमारे वहाँ मास्टरों में काम हमारे संतरापुर के और ये संतरापुर में सर इसके दिया रंग किया हुआ है समझे बात। अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि दीवार तले अंधेरा, मास्टर साहब आप इसका ऐसा तर्जुमा मत करना कि संतरामपुर गांव में तो सबको तबलीग में लगा कर आया और अभी तक वो मास्टर में छोकरे लगे हैं, फिर आप ये कहो उसके गांव उसके हल्के के 12 गांव छूट गए हैं तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि दीवार तले अंधेरा। भाई दीवार तले अंधेरा होता है तो माथे पर होता है पर तौबा कर ले आदमी तो माफ हो जाता है। भाई तौबा कर ली मास्टर, मास्टर तूने तौबा की है ले मुस्ताक तेरी वकालत करता है मास्टर साहब, ये बाजू हमारा आजमाया हुआ है देखना है।
हाँ अंदर हवा कल्चर जहाँ अपनी मस्जिद है ये मस्जिद में अपना बॉम्बे नी जमा तो आवे छे અને આ સૌ દરરોજ જે છે ને આ લોકો બધા 1992 પછી થી કન્વર્ટ થઈ ગયા છે
આ મહેબુબભાઈ વર્ષા હોટલ વાળા છે, એમની મહેનત પર આ લોકો બધા લાગ્યા પાછા. હવે આપણા સર્જણમાં લાગે છે જીઠડી ગામ, અને બીજું વેમાર છે, પણ વેમાર બી હવાખલથી કરી જ છે, એટલે એ લોકો મહેનત કરે છે. આ ગામોમાં આપણે જઈએ છે, જીઠડી છે, એમાં 15 ઘર છે આપણા સૈયદ બિરાદર. હવે અમે કન્ટિન્યુ મુલાકાતમાં જઈએ તો એ લોકો વિરોધ કરે છે. આ જે પટેલ લોકો આવે છે ને ખલવારા, એ પટેલો એમને મળે છે, આપણી જોડે હજુ કોન્ટેક્ટમાં આવતા
નથી. મતલબ ટૂંકમાં તમારું કેવું હતું કે એકદમ ત્યાં જવામાં એ લોકોને જરા વાંધો પડે. અચ્છા, બેસી ગયો. બીજું કઈ કેવું છે ને અનુસંધાન? બસ બેસો, માશાલા. એક મેં એ વાત સમજમાં આવી, ઇસમાં યે હોતા હૈ કે એસે ગાંવો કે લીએ રાસ્તા બનાના પડતા હૈ. ક્યા બનાના પડતા હૈ? જગ્યા કરીને વાત કરવાની. તો હવે જગ્યા કેવી રીતે કરવી? તો કિતાબોમાં એવું લખ્યું, માણસ એહસાન નો ગુલામ થઈ જાય છે. કેનો ગુલામ થાય? અલ મરઓ અબ્દુલ એહસાન, માણસ એહસાન નો ગુલામ થઈ જાય. એટલે જગ્યા કરવામાં તમે લોકો બહુ માસ્ટર છો. આખી દુનિયામાં જગ્યા કરી આવ્યા, ભરૂચ જિલ્લા
વાળા
કઈ કરી આવ્યા? માછરા બોલો છો, આખી દુનિયામાં જગ્યા કરી આવ્યા છો. તો જગ્યા કીધર કરી અમે? માછરા સાહેબ, બોલું, જગ્યા કીધર કરવાની? અલ ભાઈ ઉભા તો થાવ યાર, તમે તો ખરા માણસ છો. એટલે જગ્યા કીધર કરવાની? કયો બોલો, આ
જગ્યા
એક ગામ આવું જ ગામ હતું કે અમારે ત્યાં આવવાનું જ નહીં તમારે, અને એ વાત જ નહીં કરવાની. આવતી જિમ્મેદારી આવશે, એક સાચી જિમ્મેદારી લીધી ઇન્શાલ્લે એ ગામમાં હું જઈશ. હવે જવાનો તો કઈ કલાક જ નહીં, એટલે પછી ગયા કે હવે આ ગામમાં મુસલમાનો ગામ હોય ને ઘર હોય મોલ્લો હોય, એટલે બકરી કે મરઘી તો હોય જ. એટલે ગયા કે ભાઈ કોઈને બકરી વેચવાની છે તો આ ભલાની બકરી વેચવાની છે એની જોઈએ, પછી બીજી કોઈ જોઈએ. એવી રીતે ચાર બકરીઓ એમણે જોઈ. પછી ચાર માં એમણે નક્કી કર્યું કે આ ચાર ચારમાં ગરીબ કોણ છે, કે આની બકરી આપણે લઈએ. એટલે એની બકરી લીધી. બકરી લીધા પછી એવું કીધું કે હવે મેં તો બકરી લઈ તો લીધી, પછી મારા ઘેર કે બાંધવાની વ્યવસ્થા નથી, એટલે તમારા ઘેર જ અમે રાખીશું. હું દર મહિને બકરીનો જે ખર્ચો છે ચાર પાણીનો એ તમને આપીશ, પછી બધી વ્યવસ્થા થાય ત્યારે બકરી લઈ જઈશ. એવું કરીને પૈસા આપી દીધા અને બકરી એમને ઘેર જ લઈશ. હવે આ બકરીનું દૂધ છે અને તમે જેવી રીતે વાપરતો હોય તો વાપરતો, છોકરા માટે કે વેસ્ટ હોય તો તમારું એ બધું તમારું, મારે દૂધ જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે બકરી એમને ઘેરે જઈ ચાળો જ આવી ગયો અને દૂધ એમનું એમનું જીવે, એટલે પેલા ઘરવાળા તો કોઈ નુકસાન હતું જ નહીં. અઠવાડિયા પછી ગયા તે ઘેરે પછી રોટલી વધેલી હોય તે જઈ જતા, એના બદલે એને ઘરમાં ભેગી રાખી ને પછી સુકાઈ ગઈ, પછી સૂકી રોટલી ભેગી કરી અને થોડી અંદર ચૂની ને એવું કઈ મૂકીને લઈ ગયા. ને કે આ બકરી ની ખબર લેવા આવ્યો છે, આજ વાત જે છે ચાળો પૂછે છે એમને એની સાથે. પછી કઈ કોઈ વખતે કિલો કેળા લઈ જાય, કોઈ વખતે કઈ બીજું કઈ ફ્રૂટ લઈ જાય, કે આ તમારા છોકરા માટે ને આ બકરી માટે. આવું કરતા કરતા રસ્તો છો, પછી બે ત્રણ મહિના થઈ પછી ખિસ્સામાં ચોકલેટ બી લઈ જાય. એટલે મોલ્લા ના છોકરા એ ઓળખી ગયા કે આપડા બકરી વાળા કાકા આવ્યા. પછી એ છોકરા ને ચોકલેટ પકડાવી દે રસ્તામાં બને, પછી એ છોકરા ને એક એક ચોકલેટ ખિસ્સામાં હોય છે આપી દે. એવું કરતા કરતા 5-6 મહિના થયા, એટલે પછી બકરી પાછી આવી, એ બકરી ને 2 બચ્ચા આવ્યા. એટલે કે આવા બચ્ચા તમારે જાણતા હતો, એ બધા બચ્ચા ના 25 રૂપિયા ફાલવાનું તમને અલગ આવ્યું. એટલે બકરી ને તો પૈસા મળતા હતા, બધા બચ્ચા ના મળતા છે. પછી એમાં 2 બચ્ચામાં એક બકરી અને એક બકરો હતો. મોટા થઈ ગયા, 6 મહિના ઉપર ના થયા, કે હવે આપડે એક એક વેચી લઈએ. ખબર લેવા દે, 10-15 દિવસ છે. પછી એમને પેલા છોકરો એમના જે બકરી વાળો છોકરો હતો ને, તે કે તમે આ બકરી લઈ લો, આ બકરો તો હું જ લઈશ. તમે બકરો એમને આપી દે કે આ બકરો કરો ભાઈ, આ બકરી અમારી. બકરી ને કેવા કોઈ ઘરાકાર હતા, આ બકરી છે તે વેચી દેશો તમે, એના જે પૈસા હશે લઈ લેશો, કે કઈ 7-1000 રૂપિયા કઈ. અને પછી પેલો ક્યાંય કામ કર્યા, બકરો મને વેચી દે ને, એટલે મેં બકરો વેચાતો છોકરા પછી 10,000 રૂપિયા આપું.
એટલે છોકરાએ એ બકરી ને દેતા તો લઈ લીધા, 10,000 રૂપિયા 7,000 તો બકરી ને એમની પાસે જ હતા, તો કેટલા આપવાના
રહ્યા?
3,000 બકરાના મળી ગયા. એમાં પછી એક વખતે પેલો ચાળો લેવા જાય, તે 3 દિવસ ની જમવા જ ના ગયા હતા. તે ચાળો લેવા ત્યાં ભાઈ ગયા, મારે હું આ મસ્જિદ માં છું ને મારથી આજે અવાયું નથી, ત્યાં બકરી માટે થોડો ચાળો લાવ્યો એટલે તમે લઈ જાય, તે ત્યાં લેવા બોલાયેલા. પછી કેવા ખાઈ ને જો તે ખાવા નાખ્યા, તાલીમ માં બેસેલા, નમાઝ પહેલા મગી, પછી ત્યાં ગયા મુકેલા. એવી રીતે એમના એક 1.5 દિવસ આવી રીતે એમની જોઈ જમાત માં લગાવીને પછી બકરી નો ચાળો અને છોકરાને પીવા આપ્યા. એવું કરતા કરતા પછી મહેનત કરી અને પછી એમને ધ્યાન બનાવ્યું અને પછી 3 દિવસ જમાત માં લઈ ગયા. એમને 3 દિવસ ત્યાં લઈ ગયા. પછી પછી ધીરે ધીરે એમના પડોશી ને જુસ્ત ને એ ભાઈ જોડે રહ્યા ને કરતા કરતા મહેનત થઈ અને અલહમદુલ્લાહ પછી એ ગામમાં જમાત જતી. એટલે આ રીતે રસ્તો ઢૂંઢો કે ભાઈ કેવી રીતે જવું ને દાખલ થવું. મળી સાહેબે કીધું હતું કે આપડે બોસ જવાનું તો વધારે ઈશાની જરૂર નથી, બધા દિલ પોલીસ કલાક કઈ ને કઈ રસ્તો આપડે બધા માટે આસાન
થવા.
એ જમાનામાં તમે લોકો આફ્રિકા ને ઇંગ્લેન્ડ ભોગી લાયા જ વખત, હજુ આટલા જમાનામાં હજુ આ લોકો આફ્રિકન ગામો યાદ નથી, ગામમાં ભૂમિ કરો પહોંચી જાય, કેમ કેમ પહોંચે એ જ ખબર નથી. હમણાં સુધી તો એ ગામોના નામો આપણા ગુજરાતના બીજા જિલ્લાઓ સાંભળ્યા નથી. શું નામ કર્યું કા સુરત કર્યું? અલા બોલો તો ખરા, તો તમે બધા અમે ના સાંભળ્યા, તમે કેમ અમે ના સાંભળતા? અલા અમે આફ્રિકા નોમો ના સાંભળ્યા, પણ તમે મારી વાત તો સાંભળો. હું શું કહી રહ્યો કે જે આટલા મોડર્ન જમાનામાં હજુ ગુજરાતના કેટલા જિલ્લા વાળોએ એ જિલ્લાઓના એ દેશોના નામ ના સાંભળ્યા જ્યાં 50 વર્ષ પહેલા ભરૂચ વાળો પહોંચી ગયો હતો. કેટલા વર્ષ પહેલા? ના, અમુક તો 200 વર્ષ પહેલા ના પહોંચેલા છે. એના 200 વર્ષ પછી બી અમુક ગામોનું નામ તો ગુજરાત વાળો કેટલા સાંભળ્યા જ નથી. તો ત્યારના તમે થી પહોંચી ગયેલા તો મળશે. તમારથી મને પૂછવું છે કે ગામો તમે 200 વર્ષ પહેલા પહોંચી ગયેલા, તો એ બધી કેવી કળ કરેલી તમે લોકોએ ત્યાં પહોંચવાની? સમજ્યા તમે મારી વાત? કારીગરી કેવી કરી હતી? 100 વર્ષ પહેલા પહોંચી ગયા. કોઈ આફ્રિકા જિલ્લા આફ્રિકા ખંડનો કોઈ દેશ નહીં હોય જ્યાં તમારે ત્યાં માણસો ના હોય. તે એવી કર આપણા બાર ગામોમાં આપણા ગામડાઓમાં ના થાય? અલગ કુછ હોવા તો કરો ભાઈ. અલગ એ લોકો પૈસા જોવા ગમે ત્યાં પહોંચી ગયા, પરિણામ લેવા માટે ના પહોંચી જવાય? તો મન બનાવો છો? કોણ કોણ મન બનાવે? કળ કરવી છે, જે કરવી હોય કારીગરી કરવી છે, બસ શું કરવી છે? જે કરવાનું થાય એ શું કરવાનું? એ તમે તમારે અમે શીખીએ, તમને શું કરવાનું? બરાબર. 103 દિવસ ની જમાત ઇન્શાલ્લાહ કોઈ આબાદ મસ્જિદ માં લઈ નહીં જશે, નક્કી કરો છો? બીજો ગઠ જે છે ને, બીજો ગઠ અમારે હલરાજ જે ફરમાતે હૈ, દૂસરા ગઠ તો દૂસરે ગઠ કે લીએ નહીં. દૂસરે ગઠ કો આપ આબાદ મસ્જિદ મેં છોડ દો. જિસ મસ્જિદ મેં મસ્જિદ વાર જમાત હૈ ઉસ મસ્જિદ મેં દૂસરા ગઠ કરના હી નહીં હૈ. એસે ગેર આબાદ સિયો કો નિશાના બના બના કર આપ હજરત તય કરો. જીતની બડી મસ્જિદે આપી અગર દૂસરા ગઠ જિસ તરફ ગેર આબાદ મેં શરૂ કર દે તો ઇનશાલ્લાહ એક દૂસરા ગઠ ઓર દિનની જમાત હૈ. તો ઇનશાલ્લાહ તું ભાઈ કહાં જા રહે હો? આપ લોગ બેઠ જાઓ થોડી દેર. ભાઈ શિક્ષા તો હમ લોગો કો ભી લગી હૈ, આપકો તો 2 દિન કા મસલા હૈ. યે હમારે કાફલે કે 42 દિન સે ઇસ તરફ બેઠ રહે. કિતને દિન સે? અરે કિતને બોલો ના. આપકો સબકો પેશાબ રખતી હૈ લેકિન દબા કર બેઠતે હૈ. આપ મુજે ભી અભી રજો, મેં ભી ચલા જાઉં પેશાબ કરને. ના સમજ ના. તો જબ હમ લોગ સબર કરતે તો આપ નહીં સબર કરોગે? આપકો નિયત કર લો એક ભી નહીં ઉઠેગા જબ તક કામ પૂરા ના હો જાય તબ તક. ઠીક હૈ ઇન્શાલ્લાહ. કોણ ઉઠ કર જાયેગા? અચ્છા વો હમારા ડોક્ટર જાયેગા. અચ્છા એક બાત યે હૈ કે એક દૂસરા ચેક કર લો ઇન્શાલ્લાહ. દૂસરા ગઠ એક સાલ યે હોય બહુ જમીન નરમ હો ચુકી હૈ, દાણે ડાલ દેને જોરદાર વાલે, અલ્લાહ કરે કે બિયારણ અચ્છા પડ જાય, ખેતી ઉગ જાય, તો કરોગે ઇન્શાલ્લાહ. 103 દિન કી કહાં જાને કા ઓર કહાં નહીં જાને કા? જિન મસ્જિદો મેં મસ્જિદવાર જમાત હૈ વહાં ઇન્શાલ્લાહ 3 દિન નહીં જાયેંગે. તય કરતે હો? દૂસરા ગઠ ઉન જગહો પર નહીં કરેંગે જહાં પર મસ્જિદવાર જમાત બની હુઈ હૈ. અગર એક સાલ જમકર મહેનત હો ગઈ ના તો ઇન્શાલ્લાહ યે જિતની નરમ દેખો, 70% લોગો કી મુલાકાત હુઈ, કિતની જમીન નરમ હો ગઈ. વરના સબસે જ્યાદા કાઠી કારગરી યહાં કી હોતી થી, સુનને કે લીએ ભી જિગર હોના ચાહિએ, એસી ભારી ભારી કારગરી થી. હાથ તોડ દેવે પૂરી લારી ઊંધી કર દેવે. ये जोन की जमा चले ना, जिस बाइक वाले जमड़े में डाबे चलते थे, यहाँ बुरे सीट दे रहे, ऐसे ऐसी कर रही होती थी, सबसे अगरी अगरी काठी. लेकिन आज देखो
એક જમાતો કિચન ને હળાવડા કિચન એક કિચન ની જમીન ઓહો ઓર 70% અક્ષર ગામમાં મુલાકાત હોય ઓર હર દિન સામે શિકાયત હમરી છીએ ક્યુ નહીં આપ્યો બોલો ખરી વાત છોટી વાત પાપ્યા કરો કે ઇનશાલ્લાહ એક સાલ ઉસકા કફારા કર દેના સર નક્કી કરતે હો અરે કરતે હો તો દૂસરા ગચ્છ ભી ઇનશાલ્લાહ જ્યાં મજીદાર જમાતે વહાં નહીં જાય ઠીક હૈ કોણ કોણ એસા તય કરતે હૈ દો બાતે હો ગઈ ઓર તીસરી વાત કે આપ લોગો મેં તય કરો કે ઇનશાલ્લાહ મેં એક ગાવડા લેતા હું પૂરા વર્ષ અપની ચીજ જમાત મેં લેકર જાઉંગા ઓર ઉસકે અલાવા આના જાના કર કરૂંગા બકરી વાલી કે મગરી મુર્ગી વાલી વો તુમ જાનો તુમ્હારા કામ કુછ ભી કર કરકે પગ પૈસા કરના ઓર શકલ બનાને કે મેં જરૂર કુછ ઉનકે ગમી મેં ઉનકે ખુશી મેં જો શકલ બનાની પડેગી વો કરૂંગા જે પાણી મગ ચડે ચડે લેવાના મગ જે પાણી ચડે ચડવા છે બસ મગ પકવવાના પકવશો ઇન્શાલ્લા આ મજવામાં કોણ કહેશે કે ઇન્શાલ્લા હું એક વસ્તી લઈશ અને જે મગે પાણી ચડશે એ પપ્પી એ પાણી ચડાવી દેશે તૈયાર છે એના માટે કોણ કોણ તૈયાર છે કોણ કોણ તૈયાર છે જરા ઉભા થઈ જાઓ ઉભા થઈ જાઓ અલ્લાને તમારા ઈરાદા બતાવો અલ્લાને તમારા ઈરાદા બતાવો વાહ 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 એક વસ્તી હું લઈશ અને વરસ ભર જ્યાં જશું અને વરસ ભર જઈને જે કર કરવી પડે કર હું કરીશ एक एक हल्के वाले अपने हल्के के साथ बैठे और जिन हजरात ने इरादे और नीयत नहीं की बस्ती में आने की वो इतना तो कर सकते हैं कि मेरी मस्जिद का जो साथी ने इरादा किया है साथ साकार दूंगा मेरे से जो बन पड़ेगा साथ साकार दूंगा बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते इतना तो करोगे करोगे कौन कौन साथ साकार वाला अब ऐसा करो ठीक है हल्के वाले बैठ जाओ और एक आदमी जाओगे एक आदमी अगर तुमको नक्की करना हो तो ये गाँव मुझे दे दो तो बता देना कि मुझे ये गाँव दे दो मैं इंशाल्लाह वरस भर वन जो मेहनत करूंगा लेकिन अब आइंदा साल का क्वेश्चन अच्छा बदल देना और अगर और अगर आप यहाँ नहीं कर सकते हो तुम जो मेहनत करोगे वो मैं ले लूंगा तो खाली अपना नाम लिखवा दो इंशाल्लाह एक गाँव लेने के लिए मैं तैयार हूँ और मशन जो गाँव मुझे दोगे वो मैं लाऊंगा बात समझ गए अगर तुम्हारी अपनी लिए तो ये दे दो तो वहाँ राय भी लिख देना और अगर तुम्हारे पास कोई राय ना हो तो खाली गाँव जो सुबह में इंशाल्लाह गाँव का बोल दिया ठीक है आशा करो मैंने क्या कहा एक ही जुमले में सब पूरा होगा ये कह रहा है कि मस्जिद मदरसे वाली बस्तियां जो गैर मानों से जहाँ काम नहीं होती वो तो आ ही जाएगा मैंने क्या कहा जहाँ मस्जिद और जमात है वो नहीं रहना अब जहाँ मदरसा है मस्जिद है लेकिन वहाँ मस्जिद और जमात नहीं है उसको लेने का अरे भाई बात समझ आ रही है मैंने तो टोंक में एक एक जुमला कहा है क्या कहा जहाँ मस्जिदवार जमात नहीं है तीन दिन भी वहीं जाएंगे दूसरा गश भी वहीं लेंगे और बिहार भी वो अपने माथे ऐसे ही लेंगे जहाँ क्या नहीं है मस्जिदवार जमात और किसी को क्या मौलाना की राय ये है कि जिस जोन में जमा जाए वहाँ का मकामी भी है हमारे साथ एक रहे तो रास्ता लेकिन उसके दो पहलू होते हैं एक तो रखने का मुस्बत पहलू ये जो आपने कहा एक मनफी पहलू क्या होता है कि उस इलाके का आदमी होता है वहाँ टेंशन में रहता है यार यहाँ कुछ हाँ यार मैं यहाँ
હતું, હા ભાઈ અહીંયા આવું હતું, હા ભાઈ એટલે નવો માણસ બધું જ કરી નાખે ને એવો જૂનો છે ને ગભરાયેલો ભગવાન કઈ જોયું હોય જૂનું. અરે જીતને હરીવાલા માલ ખાયા હોય ના ચોટેલા મોસ્કો લઈ જાવ, એટલે ના ભાઈ એ તો આવું હતું એટલે પણ આખું બદલાઈ ગયું તો જોતું તેને જૂનું બધું યાદ રહેલું હોય છે. એટલે પછી પહેલાથી કહે છે જોવા ગામમાં આવું છે, જોવા ગામમાં આવું છે. અને નવી જમાત જાય એટલે બધા છે ખબર, કોઈ ઝોન વાળાને પોતાના ઝોનમાં નહીં ચલાવવાનું, એનો ઝોન બદલી દેવાનો. કેમ કે એના ઝોનનું છે ને નેગેટિવ બધું સામે હોય, અહીંયા આવું થયેલું હોય, આવું થયેલું હોય, બીજા ઝોન ની બહુ ખબર ના હોય અને બધું જઈને કરી આવે. તમે હા વાત સમજે, પણ પોતાના ઝોન હોય ને તો ત્યાં ભીખ છોડી જાય, ચાલો અહીંયા આવું થયું તો અહીંયા આવું થયું. એટલે બુજુર્ગ એવું કે છે કોઈ ઝોન ને પોતાના ઝોનમાં નહીં ચલાવવાનો, એનો ઝોન બદલી જ દેવાનો, એ બીજા ઝોનમાં જેમ રમી આવશે જે કરવાનું છે. એટલા માટે મકાન ને મકાનીમાં નથી મોકલતા. અને હમણાં એટલે તમે કહો છો એ મુસ્બત પહેલું અને મનથી પહેલું અવોઈડ થાય છે કે જમા કઈ કરવા માંગે પછી અમે કહીએ છીએ ને અમે એના અમને વધારે ખબર હોય એટલે જવા એના અંદર આવું બધું કરે એટલે જે ચાલશે ચાલવા દો ને તો પછી આગળ જોઈએ. ઠીક છે, અલગ ઠીક છે. અમે કહેવાય સર ઓર પૂરી તરતીબ બનાકર દેખો તીન બાત આગળ તે હોય કેટલી બાત તે હોય.